आगे सबक देखिए भाई, वलौ قال اذا جاء غد فانت طالق سنتين وقال المولى اذا جاء غد فانت حره فجاء الغد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وهذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهم الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى زوجها يملك الرجعه. गुज़श्ता सबक में मतन के अंदर मसला जिक्र हुआ था कि खावंद ने अगर बीवी से कहा अंति तालिकुं वाहिदतन औ ला, और फिर मतन में जिक्र हुआ था कि ये कुछ भी नहीं है, यानी इससे तलाक वाकई नहीं होगी भाई, और साहिब हिदाया ने बतलाया था कि ये इबारत जो है ये मतन जामे सगीर से लिया गया है और जामे सगीर के अंदर यहां पर कोई इख्तिलाफ जिक्र नहीं है, हालांकि ये इमाम साहिब का कौल है और नीज ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का दूसरा कौल है, जबकि मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल इसके खिलाफ है। उनके नजदीक जो है औरत को तलाक रजई हो जाएगी, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का भी यही कौल था पहले भाई, तो लिहाजा यहां पर तो इख्तिलाफ जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इस मसले में इख्तिलाफ मौजूद है। और फिर हवाला दिया साहिब हिदाया ने मबसूत का, कि मबसूत की किताबु तलाक से इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के मजहब का पता चलता है इस मसले के अंदर। वो फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपनी बीवी से कहता है अंति तालिकुं वाहिदतन औ ला शैआ, तो वहां मबसूत में वाहिदतन औ ला शैआ यानी ला के साथ शय का लफ्ज भी जिक्र है भाई, और दोनों मसलों में कोई फर्क नहीं है, तो वहां पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक तलाक रजई हो जाएगी, तो इसका तकाजा है कि यहां पर भी उनके कौल के मुताबिक एक तलाक होनी चाहिए भाई। तो लिहाजा मालूम हुआ जो मतन के अंदर जिक्र किया गया है यह हजरत शेखैन रहमहुमल्लाह का कौल है, लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि यह सब का कौल है तो फिर इस सूरत में कहना पड़ेगा कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से इस सिलसिले में दो रिवायतें हैं, एक रिवायत तो यही जो मतन में आ गई कि कुछ भी वाकई नहीं होगा, और दूसरी वो रिवायत जो मबसूत की किताबु तलाक में जिक्र है कि एक तलाक रजई वाकई हो जाएगी, और वजह इसकी जिक्र फरमाते हैं साहिब हिदाया के अंति तालिकु वाहिदतन औला, यहां पर मुतकल्लिम जो है उसने वाहिदा और ला के दरमियान औ को जिक्र कर दिया कि तुम्हें एक तलाक है या नहीं है, तो इसकी वजह से शक वाकई हो गया, तो ये वाहिदतन तो साकित हो जाएगा, लेकिन इससे माकबल अंति तालिकुन तो मौजूद है, वो अपना असर दिखाएगा और वो सरीह है, तो उससे एक रजई तलाक हो जाएगी। जबकि शेखैन रहमहुमल्लाह की दलील ये है कि जब भी वसफ के साथ अदद को जिक्र किया जाए तो तलाक अदद से वाकई होती है भाई, और लिहाजा यहां पर जब वाहिदतन औला कहा तो यहां अदद मौजूद है, तो तलाक ने इसी अदद से वाकई होना है, लेकिन यहीं पर इसके साथ औला को भी जिक्र कर दिया तो अब इसके तलाक के वाकई होने में शक आ गया, और शक की वजह से तलाक को वाकई करार नहीं दिया जा सकता, तो लिहाजा ये कलाम लगव हो जाएगा भाई। और फिर यह मसला जिक्र किया अगर खावंद अपनी बीवी से कहता है अंति तालिकुन मा मौती, कि तुझे तलाक है मेरी मौत के साथ, या खावंद उसे कहता है अंति तालिकुन मा मौती की, कि तुझे तेरी मौत के साथ तलाक है, तो फिर इस सूरत के अंदर इससे भी तलाक वाकई नहीं होगी भाई, इसलिए क्योंकि यहां पर तलाक को मुअल्लक कर दिया है मौत के साथ, जैसे आगे साहिब हिदाया ने भी फिर एक मिसाल में जिक्र फरमाया, तो ततलीक को मुअल्लक कर दिया, मैंने बताया एक है तलाक और एक है ततलीक, ततलीक जो है ये खावंद का फेल है यानी तलाक देना, और तलाक जो है वो इस ततलीक का असर है, खावंद जब तलाक देगा तो औरत तलाक वाली हो जाएगी, तो ये तलाक जो है ये ततलीक का असर है, तो लिहाजा तो यहां पर जब खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकु मा मौती, तो यहां पर उसने ततलीक को मुअल्लक कर दिया मौत के साथ, और मैंने बतलाया था कि इंदल अहनाफ मुअल्लक जो है वो सबब बनता है शर्त के वक्त, जब शर्त पाई जाएगी तो फिर उस वक्त ये अंति तालिकुन आएगा और औरत को तलाक वाके हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। जबकि शवाफे के नजदीक मुअल्लक जो होता है वो सबब बनता है इंद तकल्लुम, अलबत्ता हुक्म नहीं आता। मसलन एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकुन इन दखलती दारा, कि तुझे तलाक है अगर तू उस घर में गई, तो ये अंति तालिकुन, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये अंति तालिकुन इस वक्त तलाक का सबब बन रहा है जब खामंद ने तकल्लुम किया। लेकिन आगे आने वाली जो शर्त है इन दखलती दारा, अगर तू उस घर में गई, इस शर्त ने इसके हुक्म को रोक दिया, तो अंति तालिकुन तलाक का सबब बन रहा है लेकिन हुक्म यानी तलाक नहीं आ रही इन दखलती दार की वजह से। और जब यह शर्त पाई जाएगी यानी औरत जब उस घर में जाएगी तो साथ ही फिर तलाक आ जाएगी। तो अंति तालिकुन तलाक का सबब बना तकल्लुम के वक्त, लेकिन हुक्म मुअख्खर हो गया, हुक्म पाया जाएगा जब शर्त पाई जाएगी। जबकि इंदल अहनाफ मुअल्लक जो है वो तलाक का सबब, वो तकल्लुम के वक्त तलाक का सबब बनता ही नहीं भाई, बल्कि ये तलाक का सबब तब बनेगा जब दुखूले दार पाया जाएगा। जब औरत उस घर में दाखिल होगी तो उस वक्त अंति तालिकुन तलाक का सबब बनेगा, वो तो गोया उस वक्त अंति तालिकुन आएगा और साथ ही औरत को तलाक हो जाएगी। तो जाब्ता क्या हुआ, इंद शवाफे मुअल्लक वो सबब बनता है इंद तकल्लुम, अलबत्ता हुक्म मुअख्खर हो जाता है। और जबकि इंदल अहनाफ मुअल्लक जो है वो सबब बनता है इंद शर्त, जब शर्त का वजूद पाया जाएगा भाई। तो लिहाजा ये अंति तालिकुन मा मौती, तो यहां पर जब मौत आएगी खावंद की तो उस वक्त अंति तालिकुन सबब बनेगा, तो उस वक्त ततलीक पाई जाएगी, और जब ततलीक पाई जाएगी तो उसके बाद तलाक आया करती है। अंति तालिकुन पूरा होगा तो तलाक आएगी, और अंति तालिकुन के वक्त तो मौत आ रही है, तो अंति तालिकुन के वक्त तो मौत आ रही है। जब तक अंति तालिकुन पूरा हुआ मौत भी हो चुकी है और उसके बाद तलाक आ रही है, और अब तो खावन में तलाक देने की अहलियत ही नहीं है, वो तो मर चुका है, लिहाजा ये कलाम लग्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। या अगर औरत की मौत पर मुअल्लक किया है अंति तालिकुन मा मौती की, तो फिर ऐन औरत की मौत के वक्त अंति तालिकुन आ रहा है यानी ततलीक आ रही है, और फिर जब औरत मर चुकी तो तब तलाक आएगी। अब तो औरत मर चुकी है, वो तो तलाक का महल ही नहीं है भाई। बात समझ में आ गई। तो तलाक के लिए जरूरी है कि खावन में तलाक की अहलियत हो और बीवी जो है वो तलाक का महल हो, फिर ही तलाक होती है, वैसे नहीं। तो दोनों सूरतों में एक में या तो खावन की अहलियत फौत हो चुकी है लिहाजा तलाक नहीं होगी, या बीवी का महल होना फौत हो चुका है लिहाजा तलाक वाके नहीं होगी। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी मसला जिक्र किया कि अगर खावन बीवी का मालिक बन जाए, चाहे पूरी इसकी जात का मालिक बने या जुज का मालिक बने, तो इस सूरत में निकाह खत्म हो जाएगा। या बीवी खावन की मालिक बन जाए, चाहे पूरे खावन की मालिक बने चाहे उसके जुज की मालिक बने, दोनों सूरतों में निकाह जो है वो खत्म हो जाएगा। वजह यह इसलिए क्योंकि अगर औरत मालिक बनेगी तो औरत जो है वो तो ममलूका थी, इसीलिए तो खावंद को नाकिह कहते हैं निकाह करने वाला, और औरत को मनकूहा कहते हैं। तो खावंद को मिलके निकाह हासिल है, और किस पर हासिल है, बीवी पर, तो वो ममलूका हुई, उसमें क्या है, खावंद की मिलके निकाह है, तो मालूम है बीवी ममलूका है। लेकिन जब इसने खावंद को खरीदा तो ये खावंद की मालिक बन गई, तो वही औरत खावंद की निस्बत से मालिक भी है ममलूक भी है। ऐसा नहीं हो सकता भाई, एक वक्त में एक शख्स मालिक बन सकता है एक चीज का या उसका ममलूक बन सकता है, दोनों सिफतें इकट्ठी एक ही हैसियत से नहीं आ सकती भाई, तवज्जो है। तो लिहाजा इस सूरत में जब बीवी खावंद की मालिकन बन गई है तो खावंद की इसके ऊपर जो मिलके निकाह थी वो खत्म हो चुकी, वो नहीं है, वो बाकी नहीं रह सकती। और अगर इसके मुकाबले में खावंद ने बीवी को खरीदा है तब भी निकाह बाकी नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि खावंद को जो औरत पर शरीयत ने मिलके निकाह दी है वो जरूरत की वजह से है, बकाए नस्ल के लिए, ताकि इसकी नस्ल बाकी रह सके, ताकि नस्ल باقی رہ سکے تو یہ ملکیت یہ جو مل کے نکاح شریعت نے دی ہے خاوند کو یہ ضرورت کی بنا پر ہے کیونکہ خاوند اپنی بقائے نسل کا محتاج ہے انسان کیا ہے اپنی بقائے نسل کا محتاج ہے تو اس ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اس کو مل کے نکاح دی ہے ورنہ تو حرہ پر کسی کو ملکیت حاصل نہیں ہو سکتی آزاد عورت ہے تو اس پر ملکیت نہیں ہونی چاہیے لیکن ضرورت کی وجہ سے اور حاجت کی وجہ سے شریعت نے مل کے نکاح دی ہے اور جب مل کے یمین آ گئی تو جب اصل ملکیت آ گئی تو یہ جو ملکیت جو ضرورت کی وجہ سے تھی اب اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہ رہی لہذا یہ ختم ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی لہذا دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا مالک بنے گا فوراً نکاح ختم ہو جائے گا اور پھر خاوند طلاق دیتا ہے تو وہ لغو چلی جائے گی کیونکہ نکاح ختم ہو چکا حالانکہ طلاق کے لیے تو نکاح کا پورے طور پر باقی رہنا یا بعض اعتبار سے باقی رہنا ضروری ہے بھائی اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ ایک شخص نے کسی کی باندی سے نکاح کیا ہوا ہے اور وہ اس باندی سے کہتا ہے انتی طالق سنتینی مع عتقی مولا کی ایا کی کہ تجھے دو طلاقیں ہیں تیرے آقا کے تجھے آزاد کرنے کے ساتھ صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ یہاں عتق کا لفظ ذکر ہے متن میں لیکن یہ عتق اپنے حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ اعتاق کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے تو اگر عتق بمانے اعتاق کے ہوا تو یہ اس کا مجازی معنی ہے اور اگر عتق کو اپنے ہی معنی میں رکھتے ہیں تو پھر اعتاق یہاں مقدر نکال لیں گے انت طالق سنتینی مع عتق باعتاق مولا کی ایا کی تو یہاں اعتاق ہونا ضروری ہے میں نے بتایا تھا اس لیے کیونکہ اعتاق یہ ہے آقا کا فعل آقا آزاد کرے گا تو عورت آزاد ہوگی تو اعتاق ہے علت اور عتق اس کا معلول ہے اس کا اثر ہے اس کا حکم ہے تو جب مالک اعتاق کرے گا تو عتق آ جائے گا تو لہذا یا تو اس عتق کو ہی اعتاق کے معنی میں لینا پڑے گا یا یہاں پر اعتاق کو مقدر نکالنا پڑے گا کیونکہ اعتاق کے بغیر عتق نہیں ہو سکتا تو لہذا چاہے آپ عتق کو اپنے معنی میں رکھیں چاہے اس کو آپ اعتاق کے معنی میں لے لیں دونوں صورتوں میں یہ جو ہے یہ شرط بنے گی انت طالقن کے لیے کیا بنے گی شرط بنے گی انت طالقن کے لیے یعنی وہ جو تطلیق ہے انت طالقن میں خاوند کیا کر رہا ہے طلاق دے رہا ہے تو یہ تطلیق ہے تو معلوم ہوا تطلیق کے لیے اعتاق جو ہے وہ شرط ہے بھائی اور شرط کیسے ہے تو صاحب ہدایہ نے بتلایا تھا کہ شرط اسے کہتے ہیں جو تکلم کے وقت معدوم ہو اور اس کے ہونے کا امکان ہو اس کے ہونے کا امکان ہو سکتا ہے ہو جائے ہو سکتا ہے نہ ہو تو شرط اسے کہتے ہیں جو تکلم کے وقت معدوم ہے اور اس کے ہونے کا امکان ہے اور نیز حکم کا اس کے ساتھ تعلق ہے جیسے یہاں پر بھی جب خاوند نے انت طالق سنتینی مع عتق مولا کی ایا کی کہا تو ابھی عورت آزاد نہیں تو ابھی اعتاق نہیں لیکن اس اعتاق کے ہونے کا امکان ہے اور نیز اس کے ساتھ حکم کا بھی تعلق ہے بھائی کہ اعتاق ہوگا تو طلاق واقع ہو جائے گی بھائی تو معلوم ہو یہ شرط ہے اور جب یہ شرط ہے تو پھر جب یہ شرط پائی جائے گی تو پھر وہ تطلیق بھی ہو جائے گی بھائی البتہ یہاں پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو معا کا لفظ ذکر ہے کس کا کیا لفظ ذکر ہے معا کا لفظ ذکر ہے اور معا کا معنی ہوتا ہے ساتھ بھائی ماں کا کیا معنی ہے ساتھ معلوم ہوا آزادی کے ساتھ انتی طالقن آنا چاہیے جی. آزادی کے ساتھ انتی طالقن آنا چاہیے حالانکہ شرط تو مقدم ہوتی ہے اور مشروط مؤخر ہوتا ہے خاوند نے بیوی سے کہا انتی طالقن ان دخلتی دارا تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو جب گھر میں جائے گی پھر طلاق ہوگی معلوم ہو شرط پہلے ہوتی ہے اور مشروط بعد میں لیکن یہاں تو ماں کا لفظ آ رہا ہے تو اس کا بھی جواب دیا صاحب ہدایہ نے کہ معا کبھی کبھار تاخر کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہو جاتا ہے یعنی بعدو کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور یہاں پر بھی جب آگے اعتاق جو ہے وہ شرط ہے तो लिहाजा यहां पर माँ को बादू के माना में ले लेंगे, क्योंकि शर्त मुकदम होती है और मशरूत मुअख्खर होता है, इसलिए माँ को बादू के माना में ले लेंगे। तो लिहाजा इताक के बाद जो है वो तत्लीक वाकई होगी भाई, और जब इताक हो चुका है उसके बाद तत्लीक वाकई हो रही है तो आजाद औरत पर तलाक वाकई हो रही है, और इसकी तलाकें पहले दो थीं लेकिन अब क्या हो चुकी, तीन, और अब वो दो तलाकें वाकई हुई तो अभी भी एक तलाक बाकी है, खावंद रुजू कर सकता है भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वलौ قال اذا جاء غد فانت طالق سنتين وقال المولى اذا جاء غد فانت حرة فجاء الغد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيز। ये मसला अच्छी तरह समझ लें भाई, ये जरा मुश्किल मसला है। सूरत मसला ये कि एक शख्स ने एक बांदी से निकाह किया हुआ है, वो बांदी से कहता है इदा जा गदुन फअंति तालिकुन सिनतैनी। मैंने बतलाया था आपको कि गद का माना है आने वाला कल, तो खावन ने बीवी से कहा इदा जा गदुन, जब कल का दिन आए फअंति तालिकुन सिनतैनी तो तुझे दो तलाकें हैं, और आप जानते हैं बांदी की दो ही तलाकें होती हैं, तो इन दो तलाकों से हुरमत मुगल्लजा आती है भाई। फिर उसके बाद उस बांदी से दोबारा निकाह जायज नहीं, इल्ला यह कि किसी और से वो निकाह करे और फिर उसका इंतकाल हो जाए या वो तलाक दे दे, फिर पहला खावन निकाह कर सकता है, वैसे निकाह नहीं कर सकता। तो अब खावन ने बीवी से कहा जब कल का दिन आए तो तुझे दो तलाकें हैं। इधर आका ने भी अपनी इस बांदी से कह दिया इदा जा अगदुन फअंते हुर्रतुन, जब कल का दिन आए तो तू आजाद है। कल का दिन आए तो खावंद ने दो तलाकों को कल के दिन के साथ मुअल्लक कर दिया, और आका ने आजादी को कल के दिन के साथ मुअल्लक कर दिया। तो इस सूरत में जब कल का दिन आएगा तो वो उस वक्त आजाद भी होगी और उस वक्त तलाकें भी वाकई होंगी। तो क्या उसके बाद खावंद के लिए रुजू का हक रहेगा या ये हुरमत मुगल्लजा आ जाएगी और बगैर किसी दूसरे से निकाह किए पहले खावंद के साथ वो हलाल नहीं होगी। तो याद रखो शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि इस सूरत में हुरमत गलीजा आ जाएगी, यानी सख्त किस्म की हुरमत आ जाएगी। अब दो तलाकें वाकई हुई हैं और अभी बांदी ही थी, इसी हालत में दो तलाकें वाकई हो गई हैं, लिहाजा हुरमत गलीजा आ गई और अब खावन के लिए यह बांदी हलाल नहीं है। और नीज ये बांदी तीन हैज गुजारेगी, इद्दत के तीन हैज गुजारेगी, अगरचे बांदी की इद्दत दो हैज है लेकिन यहां ये तीन हैज गुजारेगी। बात समझ में आ गई। देखिए भाई आगे दलील भी जिक्र करेंगे, तवज्जो से भाई, ये जरा मुश्किल मसला है। वलौ قال اذا جاء غد فانت طالق سنتين, और अगर खावन ने कहा कि जब कल का दिन आ जाए तो तुझे दो तलाकें हैं, وقال المولى, और आका ने भी कहा اذا جاء غد فانت حرة, कि जब कल का दिन आ जाए तो तू आजाद है, यानी एक ही शर्त के साथ दोनों ने आजादी और तलाकों को मुअल्लक कर दिया है। फजा अल गदू, तो अगला दिन आ गया, लम तहिल लहू हत्ता तन कि हजौ जन गए रहू, तो अब यह बांदी उस खावंद के लिए हलाल नहीं है यहां तक कि वो किसी इसके अलावा किसी दूसरे खावंद से निकाह कर ले। वइद्दतुहा सलासु हियज़िन, और नीज इस बांदी की जो इद्दत है वो तीन हैज हैं। वहादा इंद अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाहु ताला, और ये शेखैन रहिमहुमल्ला के नजदीक है। वकाल मोहम्मद रहिमहुल्लाहु ताला ज़ौजुहा यमलिकुर रजअता, इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं कि इसका खावंद रुजू का मालिक है। वो फरमाते हैं ये मसला भी पिछले मसले की तरह है, और पिछले मसले के अंदर क्या जिक्र था, अगर खावंद ने बीवी से क्या कहा था अंति तालिकुन सिनतैनी माइद की मौला की इया की, वहां पर आजादी पहले आई और तलाक बाद में आई तो तलाकें बढ़कर तीन हो गई थी, लिहाजा तीन तलाकों वाली औरत को सिर्फ दो मिली हैं, लिहाजा अभी भी एक बाकी थी और खावन वहां रुजू कर सकता था। तो यहां पर भी हुरमत गलीजा नहीं आएगी, बल्कि आजादी के बाद यह तलाक वाकई होगी, और आजादी के बाद तो उसकी तलाकें बढ़कर तीन हो गई, लिहाजा दो की वजह से हुरमत गलीजा नहीं आएगी बल्कि बल्कि अभी भी खावंद रुजू कर सकता है, एक तलाक का अभी भी वो मालिक है भाई। तो कहते हैं वकाल मोहम्मद रहिमहुल्लाह ताला ज़ौजुहा यमलिकुर रजअता, कि इसका खावन जो है वो रुजू का मालिक है। लिअन्ना ज़ौजा क़ारनल ईक़ा बिइताक़िल मौला हैसु अल्लक़हु बिशर्तिल लज़ी अल्लक़ बिहिल मौला अल-इत्क़ा। लिअन्ना ज़ौजा, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं कि खावंद ने ईक़ा तलाक को इताक़ के साथ मिला दिया। तो वह जो है, खावन ने भी क्या कहा, जब कल का दिन आए तो तुझे तलाक है, और जब शर्त पाई जाएगी कल का दिन आएगा तो उस वक्त अंति तालिकुन भी आएगा। इंदा लखनाफ जब शर्त पाई जाए तो उस वक्त मुअल्लक सबब बनता है भाई, तो लिहाजा उस वक्त अंति तालिकुन आएगा, और इसी तरह अगला दिन जब आएगा तो उस वक्त ही आका की तरफ से अंति हुर्रतुन भी आएगा, क्योंकि आका ने भी क्या कहा है, जब कल का दिन आए तो तू आजाद है। तो मालूम हुआ आका ने आजादी को मुअल्लक कर दिया कल के दिन के आने के साथ, लिहाजा जैसे ही कल का दिन आएगा तो उस वक्त ये अंति हुर्रा सबब बनेगा और फिर इत्क आ जाएगा। और आप पढ़ चुके हैं, तवज्जो है कि इताक ये इल्लत है, आका आजाद करेगा तो बांदी आजाद होगी, तो इताक ये है इल्लत, इताक है इल्लत, और इत्क जो है वो इसका मालूल है। इत्क क्या है, इसका मालूल है। याद रखो, याद रखो, इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है, इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है। इल्लत कहते ही उसको हैं जिससे मालूल जुदा नहीं हो सकता, जैसे ही इल्लत पाई जाएगी उसी लम्हे में मालूल का पाया जाना जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि इल्लत पहले हो और मालूल बाद में हो, नहीं नहीं, इल्लत और मालूल दोनों का जमाना एक ही होता है। जैसे देखो, सूरज निकलेगा तो दिन होगा, सूरज का निकलना इल्लत है और दिन का होना मालूल है, और याद रखो ये दोनों का जमाना एक ही है। आप ये ना कहें पहले सूरज निकलेगा फिर उसके बाद दिन होगा, नहीं नहीं, बिल्कुल एक जमाना है। जो जो सूरज निकलता जा रहा है साथ साथ दिन होता जा रहा है, एक लम्हे का भी दोनों में फर्क नहीं है। तो याद रखो, इल्लत है तो मालूल है, इल्लत नहीं तो मालूल भी नहीं। तो इल्लत मालूल को वजूद देने वाली है
जी।
तो आपके जहन में आएगा जो चीज वजूद देने वाली है उसको पहले होना चाहिए और मालूल को बाद में होना चाहिए, नहीं भाई, जिस लम्हे में इल्लत होगी उसी लम्हे में मालूल भी होगा। ये जो इल्लत है ये मालूल के वजूद का सबब है, लिहाजा ये मुकद्दम तो होगी, क्या होगी, मुकद्दम, लेकिन जमाने के एतबार से नहीं मुकद्दम, अपनी जात के एतबार से मुकद्दम है
जी।
किस एतबार से, जमाना दोनों का एक है, इल्लत और मालूल का। हां, इल्लत को सिर्फ तकद्दुम जाती हासिल है, इल्लत जात के एतबार से मुकद्दम है, जमाने के एतबार से मुकद्दम नहीं है भाई। तवज्जो है, इल्लत जात के एतबार से मुकद्दम है, जमाने के एतबार से मुकद्दम नहीं है। तो इल्लत को तकद्दुम जाती तो हासिल है मालूल पर, लेकिन तकद्दुम जमानी हासिल नहीं है। मैंने बताया कि सूरज निकलता है तो दिन होता है, तो सूरज का निकलना हुआ इल्लत, दिन का होना मालूल, लेकिन दोनों का जमाना एक है। ऐसा नहीं कि सूरज पहले निकल रहा है और दिन बाद में हो रहा है, नहीं, जो जो सूरज निकलता जा रहा है साथ साथ दिन होता जा रहा है, दोनों का बिल्कुल एक जमाना है। हां, अलबत्ता सूरज का निकलना वो इल्लत है, उसको तकद्दुम जाती हासिल है, जात उसकी मुकद्दम है, जात उसकी मुकद्दम है, वो होगी तो मालूल भी होगा, वो नहीं तो मालूल भी नहीं। तो तकद्दुम जाती तो इल्लत को हासिल होता है, तकद्दुम जमानी नहीं हासिल होता भाई, तकद्दुम जमानी हासिल नहीं होता भाई। या इसी तरह देखो, आप चाबी घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा, तो चाबी का घुमाना है इल्लत और ताले का खुलना यह है मालूल, और इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है। आप यह न कहें कि चाबी पहले घूमती है ताला बाद में खुलता है, नहीं नहीं, आप जो जो चाबी घुमाते जा रहे हैं ताला खुलता जा रहा है, जब चाबी पूरी घूमेगी ताला भी पूरा खुल जाएगा। तो देखो, दोनों का जमाना एक है, अलबत्ता सिर्फ चूंकि चाबी का घुमाना वो है इल्लत, तो वो जात के एतबार से मुकदम है, जमाने के एतबार से मुकदम नहीं है। तो इल्लत को मालूल पर तकद्दुम जाती होता है, तकद्दुम जमानी नहीं होता भाई। लिहाजा आका का अंति हुर्रतुन कहना यह है इताक। यह क्या है? इताक, आजाद करना। और आका आजाद करेगा तो इतक यानी उसकी उसका हुक्म भी आ जाएगा। तो इताक यह है इल्लत और इतक यह है मालूल। और इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है, इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है। इसी तरह याद रखो तत्लीक यानी अंति तालिकुन, खावन का अंति तालिकुन कहना यह तत्लीक है यानी तलाक देना है। और तत्लीक यह इल्लत है तलाक की, तत्लीक आएगी तो तलाक भी आ जाएगी। तो तलाक क्या है? इसका हुक्म है, इसका असर है। खावन तलाक देगा तो बीवी को तलाक हो जाएगी। तो तत्लीक यह इल्लत है और तलाक इसका मालूल है भाई। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं देखिए भाई, लिअन्ना ज़ौजा करन अल ईका बिइताक अल मौला, खावंद ने ईका तलाक को मिला दिया इताक मौला के साथ। क्योंकि खावंद ने भी क्या कहा है, तुझे तलाक है अगले दिन के आने पर, और आका ने भी कहा है तू आजाद है अगले दिन के आने पर। तो मालूम हुआ इकाए तलाक और इताक दोनों का जमाना एक हो गया। जब अगला दिन आएगा, जैसे ही अगले दिन का पहला लम्हा आएगा, उसी वक्त अंति तालिकुन सिनतैन भी आएगा और उसी वक्त अंति हुर्रतुन भी आएगा। तो मालूम हुआ खावंद ने इकाए तलाक को किसके साथ मिला दिया है? इताक मौला के साथ। किसके साथ? दोनों का जमाना एक है, तवज्जो है। तो कहते हैं लिअन्ना ज़ौजा करन अल ईका बि इताक अल मौला, इसलिए क्योंकि खावंद ने ईका तलाक को मिला दिया है बि इताक अल मौला, आका के इताक के साथ। हैसु अल्लकहु बि शर्त अल्लज़ी अल्लक बिहि अल मौला अल इतका। हैसु, हैसु याद रखो कभी इल्लत बयान करने के लिए भी आता है, तो इसका तर्जमा करेंगे क्योंकि, क्योंकि या इस वजह से के। तो खावंद ने ईका तलाक को इताक मौला के साथ मिला दिया है। हैसु अल्लकहु, क्योंकि खावंद ने ईका तलाक को मुअल्लक कर दिया है। बिशर्ति अल्लदी, उसी शर्त के साथ। अल्लदी अल्लक बिहिल मौला अल-इत्का, जिसके साथ मौला ने इत्क को मुअल्लक किया था। खावंद ने भी इताक को उसी शर्त के साथ मुअल्लक किया है जिस शर्त के साथ मौला ने इताक को मुअल्लक किया था। बात समझ में आ रही है? तो दोनों मिल गए, दोनों का जमाना क्या हो गया? एक हो गया। फिर तर्जमा देख लीजिए, लिअन्ना ज़ौजा करन अल ईका बि इताक अल मौला, इसलिए क्योंकि खावंद ने ईका तलाक को मिला दिया है इताक मौला के साथ। हैसु अल्लकहु बिशर्ति, क्योंकि खावन ने ईका तलाक को मुअल्लक कर दिया है उस शर्त के साथ। अल्लज़ी अल्लक बिहिल मौला अल-इत्का, जिसके साथ मौला ने इत्क को मुअल्लक किया था यानी अगले दिन का आना जो है उसके साथ। व इन्नमा यनअक़िदुल मुअल्लकु सबबन इंदा शर्ति, और मुअल्लक जो होता है, मैंने क्या बताया, इंदल अहनाफ मुअल्लक सबब बनता है, इंदा तकल्लुम या इंदा शर्त, इंदा शर्त, तो वही बयान कर रहे हैं। वह इन नमाया नाकिदुल मुअल्लक सबबन इंदा शर्ति, और मुअल्लक जो है वह सबब शर्त के वक्त ही बनता है। वल इत्क युकारिनुल इताका, तो मालूम हुआ जिस वक्त शर्त पाई जाएगी, जब अगला दिन आएगा तो उसी वक्त इताक भी आएगा। क्या आएगा? इताक आएगा, अंत हुर्रतुन आएगा। और इताक इल्लत है और इत्क क्या है? उसका मालूल है। और इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है। तो जिस जमाने के अंदर, जिस जमाने के अंदर इताक आएगा, उसी जमाने के अंदर इत्क भी आ जाएगा। मैंने बताया कि इल्लत को मालूल पर तकद्दुम जाती हासिल होता है, तकद्दुम जमानी हासिल नहीं। तो इताक यह है इल्लत और इत्क यह है मालूल। तो इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है। जिस जमाने में इताक है, उसी जमाने के अंदर क्या पाया जाएगा? इत्क भी। तवज्जो है। तो कहते हैं वल इत्क युकारिनुल इताक, और इत्क जो है वो मिला हुआ है इताक के साथ, लिअन्नहु इल्लतुहु, क्योंकि ये उसकी इल्लत है, और इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है। असलुहुल इस्तिताअत माअल फिअल, और असल इसकी जो हमने जिक्र कर दिया वो इस्तिताअत माअल फिअल है। इस्तिताअत का माना है कुदरत। याद रखो आप जो भी कोई काम करते हैं तो कुदरत उसकी इल्लत है
जी।
आप मसलन खाना खा रहे हैं तो मालूम हुआ आपको अल्लाह ने कुदरत दी है खाना खाने की। अगर कोई बीमार है मरीज है, देखो उसको खाने की कुदरत नहीं होती
जी।
वो खाना नहीं खा सकता, तवज्जो है। तो मालूम हुआ कि इस्तेताअत यानी कुदरत वो फेल के साथ मिली हुई होती है। कुदरत जब भी आप कोई काम करते हैं मालूम हो आपको इस काम पर कुदरत है
जी।
तो कुदरत हुई इल्लत और वो फेल हुआ मालूल। कुदरत है तो वो फेल कर रहे हैं, कुदरत नहीं तो आप वो फेल भी नहीं कर सकते। तो कुदरत और फेल दोनों का जमाना एक होगा। जिस लम्हे के अंदर आप खाना खा रहे हैं इसी लम्हे में आपको कुदरत भी है और इसी लम्हे में आप ये फेल भी कर रहे हैं। बतलाना ये चाहते हैं इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है, वही बात जो मैंने वजाहत कर दी
जी।
तो कुदरत क्या है इल्लत, और फेल क्या होता है मालूल। और कुदरत है तो आप कोई फेल कर सकते हैं, कुदरत नहीं तो आप फेल भी नहीं कर सकते। आप जो भी फेल कर रहे हैं आप में उसकी कुदरत है। मसलन आप इस वक्त चल रहे हैं तो आप में कुदरत है तो आप चल रहे हैं, तो कुदरत और फेल दोनों का जमाना एक है। या आप खेल रहे हैं तो भी कुदरत और खेलना दोनों का जमाना एक है। आप में कुदरत है खेलने की तो आप खेल रहे हैं, कुदरत ना होती तो आप खेलते भी ना। तो जो भी आप फेल करते हैं उसके साथ कुदरत होती है, और कुदरत है इल्लत और वो फेल होता है मालूल, और इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है। अगर आप कहें नहीं जी कुदरत पहले है और फेल बाद में है, कुदरत है तो फेल करेगा, मालूम है कुदरत पहले है, कहते हैं नहीं कुदरत इल्लत है और इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है। अगर आप ये कहें कुदरत पहले थी और फेल बाद में है तो मालूम है जिस वक्त फेल पाया जाएगा उस वक्त कुदरत नहीं, और बगैर कुदरत के फेल कैसे हो सकता है भाई, बगैर कुदरत के तो फेल हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है, कुदरत और फेल का जमाना एक होता है। लिहाजा इताक और इत्क का जमाना एक ही है भाई। तो कहते हैं असलुहुल इस्तिताअतु माअल फिअल, असल इसकी जो हमने जिक्र कर दिया वो इस्तिताअत माअल फिअल है यानी कुदरत माअल फिअल है। फयकूनु तत्लीकु मुकारिनन लिल इत्क जरूरतन जी। दलील चल रही है, साहिब हिदायत दलील बयान फरमा रहे हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के मजहब की। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, खावंद ने दो तलाकों को मुअल्लक किया है कल के आने पर, और आका ने आजादी को मुअल्लक किया है कल के आने पर। तो शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं हुर्मत गलीजा आएगी, जिस वक्त आजादी आ रही है उसी जमाने में दो तलाकें भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आजादी पहले है और तलाकें बाद में हैं। अगर आजादी पहले होती तो तलाकें बढ़कर तीन हो जाती और फिर दो वाके हो जाती तो भी औरत हलाल रहती खावंद के लिए। लेकिन यहां इतक और तलाक का जमाना बिल्कुल एक ही है। जिस जमाने में इतक आ रहा है उसी जमाने में तलाक आ रही है, और इतक तो किस पर आ रहा है बांदी पर, तो तलाकें भी किस पर आ रही हैं बांदी पर, लिहाजा हुर्मत गलीजा आ जाएगी
जी।
दलील समझ में आ रही है। तो कहते हैं फयकूनु तत्लीकु मुकारिनन लिल इत्क, तो तत्लीक जो है वो मिली हुई होगी इत्क के साथ जरूरतन यकीनी तौर पर। मैंने बताया था जरूरत का क्या तर्जमा करें, बदीही और यकीनी के, जो भी आपको मुनासिब लगे। तो बदीही वो चीज होती है जिसका हर एक को पता है, जिसके लिए किसी दलील की जरूरत और हाजत नहीं होती भाई। इधर देखिए, आका ने इताक को मुअल्लक कर दिया कल के दिन के साथ, तो कल के दिन का जैसे ही पहला लम्हा आएगा इताक आएगा, और इताक तो इल्लत है और इत्क उसका मालूल है। तो जिस लम्हे में इताक आएगा उसी लम्हे में इत्क भी आ जाएगा, दोनों का जमाना क्या है एक। और नीज खामन ने क्या कहा, कल का दिन आए तो तुझे दो तलाकें हैं, तो तो ऐन जब कल का पहला लम्हा आएगा ऐन उसी लम्हे में अंतितालिकुन सिनतैन भी आ रहा है। तो मालूम हुआ ये जो पहला लम्हा है यही है इता का भी जमाना और यही है इतक का भी जमाना, और इसी इतक के जमाने में अंतितालिकुन सिनतैन भी आ रहा है। तो अंतितालिकुन सिनतैन इतक के साथ आ रहा है, अंतितालिकुन सिनतैन इतक के साथ आ रहा है, और अंतितालिकुन सिनतैन पूरा होगा तो फिर ही तलाक आएगी। तो लिहाजा ये अंतितालिकुन सिनतैन ये तो आजादी के साथ आ रहा है, और अंतितालिकुन सिनतैन के बाद तलाक ने आना है। तो अंतितालिकुन सिनतैन के साथ क्या आया इतक, तो इधर इतक पूरा हुआ इधर अंतितालिकुन पूरा हुआ और उसके बाद तलाक आई और तलाक आजाद औरत पर वाकई हो गई। तो दो तलाकें वाकई हो गई लेकिन अभी भी एक तलाक बाकी है, खावंद रुजू कर सकता है। दलील समझ में आई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की, क्या दलील कि इताक और इतक का जमाना एक है। मालूम पहले लम्हे में यह इताक है तो इतक भी है, और ततलीक ततलीक भी उसी पहले लम्हे में है, तो ततलीक और इतक का जमाना एक हो गया। तवज्जो है, इल्लत क्या इताक, मालूल क्या इतक, दोनों का जमाना एक। तो जो जमाना इताक का वही जमाना इतक का भी, और यही जमाना ततलीक का भी है क्योंकि ये पहला लम्हा है। तो यही जमाना क्या है ततलीक का भी है, और ततलीक के बाद तलाक आती है। तो ततलीक तो इतक के साथ आ रही थी, ततलीक अंतितालिकुन कब आ रहा था, इतक के साथ आ रहा था, तो तलाक तो इसके बाद आएगी जब तक इतक हो चुका है। लिहाजा आजादी के बाद दो तलाकें आई और आजादी के बाद तो तीन हो चुकी थी, लिहाजा अभी भी खावन को रुजू का हक है। दलील उनकी समझ में आ गई। तो कहते हैं फयकून ततलीक मुकारिनन लिल इत्क जरूरतन, तो ततलीक जो है मुकारिनन वो मिली हुई होगी लिल इत्क इत्क के साथ, यानी मालूल के साथ, वो जो इता का मालूल था उसके साथ जरूरतन यकीनी तौर पर। फतुतल्लक बादल इत्क, तो उस औरत को तलाकें होंगी बादल इत्क आजादी के बाद। फसारकल मसअलतिल उला, तो यह भी उसी तरह हो गया जैसे पहला मसला था कि वहां इताक के बाद तलाकें आई थी तो खावंद रुजू का मालिक था, तो यहां भी इताक के बाद तलाकें आई हैं लिहाजा खावंद रुजू का मालिक होगा। वलिहादा युकद्दरु इद्दतुहा बिसलासी हियज़ीन, और इसीलिए इसकी इद्दत को तीन हैजों के साथ मुकर्रर किया गया है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि हुर्मत गलीजा आ गई। क्या आ गई? हुर्मत गलीजा। मालूम है तलाक किस पर वाकई हुई है? बांदी पर। बांदी पर, तो जब बांदी पर तलाक वाकई हुई है तो इद्दत दो हैज होने चाहिए थे, क्योंकि बांदी की इद्दत कितनी है? दो हैज है। लेकिन शेखैन रहमहुमल्लाह भी फरमाते हैं कि यहां तीन हैज गुजारने पड़ेंगे इस औरत को। तो मालूम हुआ ये तलाक किस पर वाकई हो रही है? आजाद औरत पर, जब ही तो वो तीन हैस को इद्दत करार दे रहे हैं। ये किसकी दलील चल रही है? इमाम मोहम्मद रहिमहुल्ला की। तो कहते हैं वली हादा युकद्दर इद्दत हाबी सला से हियजीन, और इसीलिए मुकर्रर किया जाएगा इसकी इद्दत को तीन हैजों के साथ। तीन हैजों के साथ। यहां शारहीन फरमाते हैं कि जैसे इताक इल्लत है और इतक उसका मालूल है, तो इताक और इतक दोनों का जमाना एक होगा क्योंकि इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है। इल्लत जात के एतबार से मुकद्दम होती है, जमाने के एतबार से मुकद्दम नहीं होती। तो जैसे इताक इल्लत है और इतक मालूल है, इसी तरह अंतितालिकुन ये इल्लत है और तलाक उसका मालूल है। अंतितालिकुन यानी तलाक देना, ततलीक जो है यह इल्लत है और तलाक उसका मालूल है, और इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है। इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है। तो जो जमाना इताक का था वही जमाना इतक का भी है, और वही जमाना ततलीक का भी है, तो वही जमाना तलाक का भी है भाई, वही जमाना। तो मालूम हुआ इत्क और तलाक का जमाना तो एक हुआ, और इत्क किस पर आ रहा है? बांदी पर, तो तलाक भी किस पर आ रही है? बांदी पर। लिहाजा अभी भी इश्काल पूरी तरह हल नहीं। ये कैसे कि आप कह रहे हैं इत्क पहले आ गया और तलाक बाद में आ गई? साहिबे हिदाया ने तो क्या फरमाया, इत्क पहले आया और तलाक बाद, क्योंकि इत्क के साथ ततलीक पाई गई और ततलीक के बाद तलाक आती है
जी।
तो ये जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील में साहिबे हिदाया फरमाते हैं फतुतल्लकु बादल इत्क, लिहाजा औरत को आजादी के बाद तलाक होगी, आजादी के बाद तलाक होगी। हालांकि जाब्ते के मुताबिक तो सब कुछ इकट्ठा होना चाहिए, जब इताक है उसी वक्त इत्क भी है और जब ततलीक है उसी वक्त तलाक भी है, तो सब का जमाना एक ही है क्योंकि इनमें से हर एक इल्लत और मालूल है भाई
जी।
तो फिर बाद शारहीन ने कहा कि इत्क पहले आएगा और तलाक बाद में, वजह यह कि आजाद करना यह मंदूब है, मुस्तहब है, पसंदीदा है भाई
जी।
और तलाक देना यह ममनू है। तो दोनों में से एक चीज पसंदीदा है, एक चीज ममनू है, तो जो चीज पसंदीदा है वो फौरन आ जाएगी और जो चीज ममनू है वो जरा ताखीर से आएगी
जी।
तो इत्क पहले आ जाएगा और तलाक जो ममनू है वो जरा बाद में आएगी, जिसकी वजह से इत्क के बाद तलाक आई तो अभी भी खावंद रुजू कर सकता है
जी।
तो बहरहाल बाजों ने फिर यह जवाब जिक्र किया कि इत्क पहले क्यों, क्योंकि वो मुस्तहब है, और तलाक बाद में क्यों, क्योंकि वो ममनू है। जबकि बाजों ने कहा कि इत्क पहले आएगा इसलिए क्योंकि इत्क आ रहा है आका के कौल अंति हुर्रतुन कहने से
जी।
आका ने क्या कहा था, इजा जा गदुन फ अंति हुर्रतुन, तो अंति हुर्रतुन की वजह से इत्क आ रहा है और तलाक आ रही है खावन के कौल अंति तालिकुन सिनतैन से, तुझे दो तलाकें हैं, अंति तालिकुन सिनतैन से तलाक आ रही है, लिहाजा गोया जैसे ही अगला दिन आएगा साथ ही अंति हुर्रतुन आया और साथ ही अंति तालिकुन सिनतैन आया। लेकिन अंति हुर्रतुन छोटा था, दो लफ्ज हैं अंति हुर्रतुन, तो साथ ही आजादी आ गई, और अंति तालिकुन सिनतैनी इसमें तीन लफज थे, तवज्जो है, इसमें तीन लफज थे, तो लिहाजा तलाक थोड़ी सी मुअख्खर हो गई। अंति हुर्रतुन में लफ्ज दो थे लिहाजा आजादी जल्दी आ गई, और अंति तालिकुन सिनतैन के अंदर तीन लफ्ज थे लिहाजा तलाक थोड़ी मुअख्खर हो गई, जब मुअख्खर हुई तो आजाद औरत पर तलाक वाकई हुई, लिहाजा खावंद अभी भी रुजू का मालिक है। दलील समझ में आ गई, या यूं कहो अंति हुर्रतुन के आते ही औरत आजाद हो गई, और अंति तालिकुन सिनतैनी इसमें आपने पढ़ा था जब अदद साथ मिला हो तो अदद के जरिए तलाक वाके होती है, अंति तालिकुन के जरिए तलाक वाके नहीं होती भाई। तो अंति हुर्रतुन और इधर आ रहा है अंति तालिकुन सिनतैनी, तो अंति तालिकुन तो अंति हुर्रतुन के साथ आ रहा है, दोनों के दो दो लफ्ज हैं, तो अंति हुर्रतुन जैसे ही आया इत्क आया, लेकिन अंति तालिकुन के साथ तो अभी तलाक नहीं आई, वो तो सिनतैन के साथ आएगी, वो जरा मुअख्खर हो गई, लिहाजा आजाद औरत पर तलाक आई, लिहाजा अभी भी खावंद रुजू का मालिक है। बात समझ में आ गई। ये तो थी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील। आगे वलहु मा शेखैन रहिमहुमल्लाह की दलील यह है कि अन्नहु अल्लका तलाक बिमा अल्लका बिहिल मौला इत्का, के खावन ने भी तलाक को उसी चीज के साथ मुअल्लक किया है जिसके साथ आका ने इत्क को मुअल्लक किया है। सुम्मल इत्क युसादिफुहा वहिया अमतुन, फिर यह इत्क यानी आजादी युसादिफुहा, सादफा युसादिफु के माने मुलाकात करना सौद के साथ भाई। सुम्मल इत्क युसादिफुहा वहिया अमतुन, फिर यह आजादी उस औरत से मुलाकात करेगी, वहिया अमतुन इस हाल में कि यह बांदी है। आजादी किस पर आएगी, बांदी पर आएगी ना, तो अब बांदी पर आएगी और फिर वो आजाद हो जाएगी। तो कहते हैं सुम मलित को युसादिफुहा वही अमतुन, फिर यह इत्क जो है ये उस औरत से मुलाकात करेगा इस हाल में कि ये बांदी होगी, फकदत तलाक, तो तलाक भी इसी तरह है, तलाक भी उस औरत से मुलाकात करेगा इस हाल में कि अभी वो क्या है, बांदी है, तवज्जो है। तो अगले दिन जैसे ही आएगा उसी पहले लम्हे के अंदर अंति हुर्रतुन भी आएगा और अंति तालिकुन सिनतैन भी आएगा, और जैसे ही अंति हुर्रतुन आएगा साथ ही इत्क भी आ जाएगा, और जैसे ही अंति तालिकुन सिनतैन आएगा साथ ही तलाक भी आ जाएगी, क्योंकि दोनों इल्लत और मालूल हैं। तवज्जो है, दोनों का जमाना एक है। तो जिस लम्हे के अंदर इताक है उसी लम्हे में इत्क भी है, और जिस लम्हे के अंदर ततलीक है उसी लम्हे के अंदर तलाक भी है। तो इत्क ने मुलाकात की है बांदी से, तो तलाक ने भी मुलाकात की है बांदी से, क्योंकि सबका जमाना एक है। बात समझ में आ गई। तो तलाक बांदी पर आई है, और बांदी तो दो तलाकों से उसमें हुर्मत मुगल्लजा आ जाती है, तो यहां भी हुर्मत मुगल्लजा आ जाएगी। तो यह माना है, कहते हैं सुम्मल इत्क युसादिफुहा वही अमतुन फकजत तलाकु, फिर यह इत्क इस औरत से मुलाकात करता है इस हाल में कि यह बांदी है, फकजत तलाकु तो इसी तरह तलाक भी है, यानी वो भी इससे मुलाकात करेगी इस हाल में कि यह बांदी है। व तलकतानि तुहर्रिमानिल अमत हुर्मतन गलीजतन, और दो तलाकें ये तो बांदी को हराम कर देती हैं हुर्मतन गलीजतन, हुर्मत गलीजा के साथ। बिखिलाफ मसअलतिल उला, बखिलाफ मसला उला के, लिअन्नहु अल्लकत ततलीक बि इताकिल मौला, वहां पर उसने तलाक देने को मुअल्लक किया था आका के आजाद करने पर। फयकउ तलाक बाद इत्क, तो तलाक इत्क के बाद वाके होगी। अलामा करर नाहू, उस वजह से जो हमने साबित कर दिया, क्योंकि वहां पर पिछले मसले में क्या था कि तुझे दो तलाकें हैं मा इत्क मौला की इया की, और हमने बताया था यह मा किस माना में है, बादु के माना में है, और इताक शर्त है, और अंतितालिकुन सिंतैनी ये मशरूत है, और शर्त पहले होती है और उसके बाद मशरूत पाया जाता है। तो वहां पहले इताक हुआ फिर उसके बाद तलाक आई थी, इसलिए वहां पर आजाद औरत पर तलाक आई थी, तो वहां दो तलाकों से वो हुर्मत मुगल्लजा नहीं हुई थी, वहां फिर भी खावंद को रुजू का हक था। तो कहते हैं बिखिलाफ इल मसअलतिल उला, बखिलाफ पहले मसले के, लिए अन्नहु अल्लक ततलीक बि इताकिल मौला, क्योंकि वहां पर खावन ने ततलीक को मुअल्लक किया था आका के इताक के साथ। फयकउ तलाक बाद अल इत्क, तो तलाक आजादी के बाद वाके होगी, क्योंकि आजादी शर्त है और तलाक मशरूत है। तो फयकउ तलाक बाद अल इत्क अलामा कर्ररनाहु, तो तलाक आजादी के बाद वाके होगी उस वजह से जो हमने साबित कर दिया। व बिखिलाफ अल इद्दती, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने अपनी दलील में जिक्र फरमाया कि यह तलाक आजादी के बाद वाके हुई है, और इसीलिए तो शेखैन भी इसकी इद्दत तीन हैज करार देते हैं। हालांकि अगर यह तलाक बांदी पर वाके हुई होती फिर तो उसकी इद्दत दो हैज होने चाहिए थे, लेकिन शेखैन भी क्या फरमाते हैं इसकी इद्दत कितनी है, तीन हैज। तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि जो इद्दत के अंदर हमने तीन हैज का हुक्म दिया ये बतौर एहतियात के दिया है, बतौर एहतियात के दिया है, क्योंकि आगे अगर निकाह करना है तो फिर एहतियात इसी में है कि एक हैज और इंतजार करके या एक माह और इंतजार करके फिर निकाह कर ले भाई। कहते हैं वह बिखिलाफ अल इद्दती, और बखिलाफ इद्दत के लिए अन्नहु युखदु फीहा बिल एहतियाती, इसलिए क्योंकि इसके अंदर एहतियात को लिया जाता है। व कदल हुर्मतुल गलीजत युखदु फीहा बिल एहतियाती, और इसी तरह हुर्मत गलीजा शेखैन के नजदीक क्या आ जाएगी, हुर्मत गलीजा। तो कहते हैं वकदल हुर्मतुल गलीजा तो युखदु फीहा बिल एहतियाती, और इसी तरह हुर्मत गलीजा जो है इसके अंदर भी एहतियात को लिया जाता है, इसमें भी एहतियात को लिया जाता है। वला वजह इला मा काला, और कोई वजह नहीं है उसकी जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इत्क पहले है और तलाक बाद में है, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं वला वजह इला मा काला, और कोई वजह नहीं है उसकी जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया। लिअन्न अल इत्क लौ कान युकारिनुल इताक, इसलिए क्योंकि अगर इत्क वो मिला हुआ है इताक के साथ। लिअन्नहु इल्लतुहु, क्योंकि इताक उसकी इल्लत है। फतलाक युकारिनु ततलीका, तो तलाक भी मिली हुई है ततलीक के साथ। लिअन्नहु इल्लतुहु, क्योंकि ततलीक भी तलाक की इल्लत है। फयक्तरिनानि, तो दोनों मिल जाएंगे, यानी एक ही जमाने में इत्क और तलाक आएगा भाई। बात समझ में आ गई। हासिल कलाम ये कि साहिब हिदाया ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल की तौजीह की। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक यहां भी खावंद को रुजू का हक होगा। मालूम हुआ इत्क पहले आएगा और तलाक बाद में आएगी, तो तलाक आजाद औरत पर आई और आजाद औरत की तलाकें तो तीन हो चुकी हैं, लिहाजा अब दो तलाकों से हुर्मत मुगल्लजा नहीं आएगी, बल्कि अभी भी खावंद रुजू कर सकता है। और इसके लिए साहिब हिदाया ने यह तौजीह जिक्र की कि ये इताक ये इल्लत है और इत्क इसका मालूल है, और इल्लत और मालूल का जमाना एक होता है, तो लिहाजा जो जमाना इताक का है वही जमाना इत्क का भी है और वही जमाना ततलीक का भी है, क्योंकि खावन ने भी यही कहा था इदाजा अगदुन फांती तालिकुन सिंतैनी। तो मालूम हुआ इत्क और ततलीक का जमाना एक हो गया, और ततलीक के बाद तलाक आएगी तो तलाक इत्क के बाद आई भाई, क्योंकि ततलीक और इत्क का जमाना एक, और फिर ततलीक के बाद तलाक आएगी तो तलाक मुअख्खर हो गई इत्क से। लेकिन दीगर शारहीन ने साहिब हिदाया की इस तौजीह को पसंद नहीं फरमाया। ये जो साहिब हिदाया ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल की तौजीह की और वजह जिक्र की है, उसको दीगर शारहीन ने पसंद नहीं फरमाया कि अगर इताक इल्लत है इत्क की तो इसी तरह ततलीक इल्लत है तलाक की, तो दोनों का जमाना एक ही है भाई। तो जब ततलीक और इत्क का जमाना एक हुआ तो तलाक और इत्क का जमाना भी एक ही होगा भाई। बात समझ में आ गई। तो शारहीन ने इस साहिब हिदायत की इस तौजीह को पसंद नहीं किया, और शारहीन फिर जवाब देते हैं कि यहां पर यह तलाक इत्क के बाद इसलिए होगी क्योंकि इत्क जो है वो मंदूब है और तलाक जो है वो शरअन ममनू है, तो लिहाजा जो चीज शरअन मंदूब और पसंदीदा है वो फौरन आ जाएगी और जो चीज शरअन ममनू है वो थोड़ी सी ताखीर से आएगी, तो इसलिए इत्क पहले और तलाक बाद में। जबकि दीगर शारहीन ने और तौजीह की, वो फरमाते हैं कि यहां पर इत्क इसलिए पहले है क्योंकि इत्क आया अंति हुर्रतुन से और तलाक आई अंति तालिकुन सिंतैन से, और अंति हुर्रतुन मुख्तसर है और अंति तालिकुन सिंतैन ये जरा लंबा है, इसमें तीन लफ्ज हैं, अंति हुर्रतुन में दो लफ्ज और अंति तालिकुन सिंतैन में तीन लफ्ज हैं, तो जाहिर सी बात है अंति हुर्रतुन मुख्तसर है तो इसकी वजह से इत्क भी जल्दी आएगा, और अंति तालिकुन सिंतैन इसमें जरा तूल है तो इसकी वजह से तलाक भी जरा देर से आएगी, तो इस वजह से इत्क मुकद्दम हो जाएगा और तलाक मुअख्खर हो जाएगी। तो इसलिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक इस खावंद को अभी भी रुजू का हक हासिल है। बात समझ में आ गई। जबकि शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, दोनों इकट्ठे वाके होंगे, इताक इल्लत है इत्क की तो ततलीक इल्लत है तलाक की, तो सबका जमाना एक ही है, लिहाजा जिस वक्त में इत्क आ रहा है उसी वक्त में तलाक आ रही है, और इत्क तो बांदी पर आ रहा है तो तलाक भी बांदी पर आ रही है, लिहाजा दो तलाकों से हुरमत गलीजा साबित हो जाएगी भाई। और बाकी यहां जो हमने कहा कि तीन हैज गुजारने पड़ेंगे बतौर इद्दत के इस औरत को, तो वो बतौर एहतियात के है, क्योंकि आगे अगर निकाह करना है हिल्लत और हुरमत का मामला है तो एहतियात इसी में है कि ये तीन हैज ये औरत गुजार ले और फिर निकाह कर सकती है। आगे देखिए भाई, फसल फी तशबीह तलाक व वस्फ, ये फसल है तलाक की तशबीह और उसके वसफ के बयान में। मसलन खावन तलाक को तशबीह देता है, तशबीह देता है, बीवी से कहता है तुझे पहाड़ जैसी तलाक है, तो तशबीह देता है या तलाक की कोई सिफत बयान करता है कि तुझे बदतरीन तलाक है, तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा अब वो बयान करेंगे। तो कहते हैं फसलुन फी तशबीह तलाकी व वस्फी, ये फसल है तलाक की तशबीह और उसकी सिफत लाने के बयान में। वमन काल लिमरअतिही अंति तालिकुन हाकदा युशीरु बिल इबहामी वस्सबाबती वल वुस्ता फहिया सलासुन। सूरत है मसला ये, एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकुन हाकजा, तुझे इतनी तलाक है, तुझे ऐसी तलाक है, और साथ तीन उंगलियों से इशारा किया। इबहाम कहते हैं अंगूठे को, इबहाम अंगूठा, सबाबा ये शहादत की जो उंगली है, और वुस्ता ये दरमियान वाली उंगली है, तो अंगूठा और शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली, ये तीन उंगलियों के साथ औरत की तरफ इशारा करके कहा अंति तालिकुन हाकजा, तुझे इतनी तलाक है या तुझे ऐसी तलाक है। तो उलमा फरमाते हैं तीन तलाकें हो जाएंगी, इसलिए क्योंकि उंगलियों से वो इशारा तीन का कर रहा है, मालूम हो वो तीन तलाकें देना चाहता है। तो कहते हैं वमन काल अलीम राती ही, और जिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकुन हा कजा के तुझे इस तरह तलाक है, युशीर बिल इबहाम व सबाबती वल वस्ता, इशारा करते हुए अंगूठे और शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली से, फहिया सलासुन तो ये तीन तलाकें होंगी, लिअन्न अल इशारा तबिल असाबी तुफीद अल इल्म बिल अददी फी मजरा अल आदती, लिअन्न अल इशारा तबिल असाबी, इसलिए क्योंकि उंगलियों से इशारा करना तुफीदुल इल्म बिल अददी, ये अदद के इलम का फायदा देता है, इससे अदद का पता चलता है, उंगलियों से इशारा इससे अदद का पता चलता है। तो कहते हैं लिअन्न अल इशारा तबिल असाबी, इसलिए क्योंकि उंगलियों के जरिए इशारा करना तुफीदुल इल्म बिल अददी, ये अदद के जानने का फायदा देता है, फी मजरल आदती आम लोगों की आदत में, इदख्तरनत बिल अदद अल मुबहम, जब ये इशारा मिल जाए अदद मुबहम के साथ, खामन ने अदद मुबहम भी जिक्र किया अंति तालिकुन हाकजा, ये जो हाकजा का लफ्ज लाया ये अदद मुबहम था, इतनी तलाकें और कितनी हैं वो उसने अदद उंगलियों के जरिए बतला दिया, तो हाकजा अदद मुबहम था, इससे अदद का पता नहीं चल रहा था, लेकिन उंगलियों के इशारे से अदद का पता चल गया। तो ये माना है इज़ा तरानत बिल अदद अल मुबहम, जब वो इशारा मिल जाए मुबहम अदद के साथ, قال عليه الصلاة والسلام, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अश्शहर हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा कोई महीने के बारे में कोई बात हुई तो हुजूर अलैहि सलाम ने दोनों हाथों की 10 उंगलियों से इशारा फरमाया कि महीना जो है वो इस तरह होता है, हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा, 3 दफा ये दोनों हाथों की 10 उंगलियों से इशारा फरमाया और तीसरी मर्तबा में एक अंगूठे को मोड़ लिया, तीसरी दफा में एक अंगूठे को मोड़ लिया, यानी महीना 29 का भी होता है
जी।
महीना 29 का भी होता है, हमेशा महीने का 30 दिनों का होना जरूरी नहीं। तो इस हदीस के अंदर भी अशहरु हाकजा व हाकजा व हाकजा, देखो हाकजा अदद मुबहम है और उंगलियों के साथ उसकी तादाद हुजूर अलैहि सलाम बतला रहे हैं। तो कहते हैं काल अलैहि सलाम, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अशहरु हाकजा व हाकजा व हाकजा के महीना जो है इतना होता है और इतना और इतना, अल हदीस व इन अशारा बिवाहिदतिन फहिया वाहिदतुन, जी वही तलाक का मसला, और अगर खामन ने एक उंगली से इशारा किया अंति तालिकुन हाकजा और एक उंगली से इशारा किया तो फिर एक तलाक होगी। तो कहते हैं वह इन अशारा बिवाहिदतिन फहिया वाहिदतुन, और अगर खामन ने एक उंगली से इशारा किया तो एक तलाक होगी, वह इन अशारा बिसिंतैनि फहिया सिंतानि, और अगर दो उंगलियों से इशारा किया तो दो तलाकें होंगी, लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि उंगलियां जो हैं उनसे अदद मुबहम का पता चल जाता है। आगे देखिए वल इशारतु तकउ बिल मंशूरति मिनहा, अच्छा भाई जब खावन ने इशारा किया तो 3 उंगलियां खुली हुई हैं और 2 उंगलियां बंद हैं, 2 उंगलियां बंद है, तो अब किसका एतबार करेंगे, खुली हुई उंगलियों का या बंद उंगलियों का? तो याद रखो खुली हुई उंगलियों का एतबार है, किसका एतबार है? खुली हुई उंगलियों का एतबार है। जबकि बाज फुकहा फरमाते हैं देखो ये एक हाथ का जाहिर है और एक बातिन, हाथ का बातिन ये हथेली की जानिब, ये क्या है हाथ का बातिन, और ये हाथ की पुश्त की जानिब जो है ये जिस तरफ नाखून है उंगलियों पर ये जानिब ये जाहिर है, ये हाथ का जाहिर और हथेली क्या है हाथ का बातिन। तो बाज फुकहा फरमाते हैं कि अगर हाथ के बातिन जो है औरत की तरफ किया है तो फिर खुली उंगलियों का एतबार है, और अगर हाथ का जाहिर औरत की तरफ किया है तो फिर बंद उंगलियों का एतबार है। बाज़ फुकहा क्या फरमाते हैं कि अगर हाथ का बातिन औरत की तरफ किया यानी हथेली का रुख औरत की तरफ किया है तो फिर खुली उंगलियों का एतबार है, और अगर हाथ के जाहिर को औरत की तरफ किया है यानी हथेली अपनी तरफ है तो फिर बंद उंगलियों का एतबार है। लेकिन याद रखो ये बात फुकहा की राय है, जबकि साहिब हिदाया बतलाएंगे कि एतबार खुली उंगलियों का है, किसका है? खुली उंगलियों का है। जाहिर और बातिन को नहीं देखा जाएगा भाई, चाहे हाथ के जाहिर से इशारा करे चाहे बातिन से, खुली उंगलियों का एतबार है। तो कहते हैं वल इशारा तु तकाउ बिल मंशूरति मीनहा, और इशारा वाके होगा बिल मंशूरति मीनहा, उनमें से जो खुली हुई हैं उनके जरिए। वकीला, और कहा गया है, बास फुकहा फरमाते हैं इदा अशारा बि जुहूरिहा, कि जब इशारा किया उन उंगलियों के जाहिर के साथ, यानी उनके जाहिर औरत की तरफ किया, फबिल मजमूमति मिनहा, तो फिर इशारा जो है जो उंगलियां मिलाई हुई हैं बंद की हुई हैं उनके जरिए होगा। तो साहिब हिदाया ने आपको बतला दिया खुली हुई उंगलियों का एतबार है, लेकिन अगर खावंद ने बाद में कहा मैंने तो बंद उंगलियों की नीयत की थी, खुली उंगलियां तो तीन है लेकिन बंद तो दो है, मैंने तो दो तलाकों की नीयत की थी, तीन की नीयत नहीं की थी, तो कहते हैं इस सूरत में दयानतन तो उसकी तस्दीक की जाएगी, ये उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन अगर काजी के पास मसाला चला गया तो कजाअन उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, इसलिए क्योंकि ये जाहिर के खिलाफ है। जाहिर यही है कि इशारा खुली उंगलियों से किया जाता है। तो कहते हैं वईदा कान तकाउल इशारतु बिल मंशूरति मिनहा, और जब इशारा जो है इनमें से खुली हुई उंगलियों के जरिए होता है, तो फलाउ नवल इशारत बिल मजमूमतैन, तो अगर खावन ने उन दो बंद उंगलियों के जरिए इशारे की नीयत कर ली, युसद्दकु दियानतन ला कजाअन, तो दियानतन उसकी तस्दीक की जाएगी न कि कजाअन। वकजा इदा नवल इशारत बिल कफी हत्ता, अच्छा दूसरी सूरत, खावंद ने बीवी की तरफ इशारा किया, बीवी की तरफ, और कहता है मैंने तो हथेली के जरिए इशारे का इरादा किया था, उंगलियों के जरिए इशारा मकसूद नहीं था, हथेली के जरिए, और हथेली तो एक है यानी मेरा एक तलाक का इरादा था, तो कहते हैं इस सूरत में भी दयानतन उसकी तस्दीक की जाएगी, ये उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन अगर काजी के पास बात गई तो काजी उसकी तस्दीक नहीं करेगा। तो कहते हैं वह कदा इदा नवल इशारत बिल कफी, और इसी तरह अगर खावन ने हथेली के जरिए इशारे की नीयत की, यानी वह वहां भी दयानतन तस्दीक करेंगे, हत्ता यकौ बिल उला सिंतानी दयानतन, भाई याद रखिए यहां पर भी यह हत्ता नसब नहीं देगा, क्योंकि हत्ता के नसब के लिए मैंने बतलाया था दो शर्तें हैं, कि एक तो यह कि हत्ता का माबाद मुस्तकबिल होना चाहिए हत्ता के माकबल की तरफ निस्बत करते हुए, और दूसरी शर्त यह थी कि हत्ता जो है वहां सबबियत या गाया का फायदा दे रहा हो, यानी हत्ता के माकबल को सबब होना चाहिए माबाद के लिए, या हत्ता के माबाद को गाया होना चाहिए माकबल के लिए, फिर हत्ता के बाद अन मुकद्दर होता है, तो यहां ये शर्तें पूरी नहीं, लिहाजा हत्ता नसब नहीं देगा, यानी इस हत्ता के बाद अन मुकद्दर नहीं होगा। हत्ता यकौ बिल उला सिंतानी दियानतन, यहां तक कि पहली सूरत में दो तलाकें होंगी दियानतन, यानी दो उंगलियां बंद थीं और उसने भी बंद उंगलियों से इशारे की नीयत की है, तो दो तलाकें होंगी दियानतन, और अगर उसने कहा मैंने हथेली के जरिए इशारे की नीयत की थी, तो इस सूरत में फिर एक ही तलाक वाके होगी दियानतन, ना के कजाअन भाई। तो कहते हैं हत्ता यकौ बिल उला सिंतानी दियानतन, यहां तक कि पहली सूरत में दो तलाकें वाके होंगी दियानतन, वफिसानियति वाहिदतुन, और दूसरी सूरत में एक तलाक वाके होगी, लि अन्नहु यहतमिलुहु, क्योंकि ये इशारा इसका भी इहतिमाल रखता है, ये जो हाथ से इशारा कर रहा है ये हथेली से भी इशारे का इहतिमाल रखता है और बंद उंगलियों से भी इशारे का इहतिमाल रखता है, तो दयानतन तो हम तस्दीक करेंगे लेकिन कजाअन नहीं, क्योंकि ये खिलाफे जाहिर है। तो कहते हैं लिअन्नहु यहतमिलुहु, क्योंकि ये इसका भी इहतिमाल रखता है, लाकिन नहु खिलाफु जाहिरी, लेकिन ये जाहिर के खिलाफ है, वलौ लम यकुल हाकदा यकौ वाहिदतुन, भाई खावंद ने क्या कहा था बीवी से, अंती तालिकुन हाकाजा, और साथ इशारा कर रहा है, साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि अगर यह खावंद हाकाजा का लफ्ज जिक्र न करता, यानी अदद मुबहम को जिक्र न करता, सिर्फ यूं कहता अंती तालिकुन और उंगलियों से इशारा कर देता दो या तीन का, तो फिर एक ही तलाक वाके होनी थी। ये जो हाकाजा इसने साथ जिक्र किया है, हाकाजा का लफ्ज, इस आदत के अंदर इबहाम था और उंगलियों ने आकर उस इबहाम को दूर किया था, लेकिन अंति तालिक उनके अंदर तो कोई इबहाम नहीं है, लिहाजा इसके साथ उंगलियों का बेशक इशारा भी करे उस इशारे का कोई एतबार नहीं, अंति तालिक उनका एतबार है और एक ही तलाक होगी, चाहे वो दो उंगलियों का साथ इशारा करे चाहे तीन उंगलियों का। तवज्जो है, ये तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे। लेकिन शामी के अंदर साहिब शामी फरमाते हैं कि अगर सिर्फ अंति तालिकुन के साथ भी उंगलियों का इशारा करेगा तो वो मोतबर है, तीन उंगलियों का इशारा किया तो तीनों हो जाएंगी, दो का इशारा किया तो दो हो जाएंगी, हाकजा का लफ्ज साथ लाने की जरूरत नहीं है भाई। तो कहते हैं वला उलम यकुल हा कजा, और अगर खावन हा कजा का लफ्ज न कहता तो यकउ वाहिदतुन, एक ही तलाक वाके होती, साहिब हिदाया फरमा रहे हैं। लेकिन मैंने बताया शामी में है कि आदत का फिर भी एतबार होगा भाई। तो कहते हैं उस सूरत में एक ही तलाक वाके होगी, लिया नहु लम तक्तरिन बिल आददिल मुबहमी, इसलिए क्योंकि तलाक जो है वो आदद मुबहम के साथ नहीं मिली। फबकियल एतबारु लिकौलिही अंति तालिकुन, लिहाजा खावन के कौल अंति तालिकुन का एतबार बाकी रहा, उसी का एतबार करेंगे और उससे तो एक तलाक होती है। आगे देखिए व इदा वसफत तलाक बिज़र्ब मिन ज़ियादति अव शिद्दति काना बाइनन, अगर खावन ने तलाक को मौसूफ किया ज्यादती या शिद्दत के साथ तो इस सूरत में फिर तलाक बाइन होगी। क्या होगी? तलाक बाइन होगी जी। कहते हैं वह इदा वसफत तलाक बिजर बिन मिन ज्यादती औ शिद्दती, और अगर खावन ने तलाक को मौसूफ किया बिजर बिन, जर्ब का माना है किस्म नौ, बिजर बिन मिन ज्यादती अव शिद्दती, ज्यादती या शिद्दत की नौ में से किसी के साथ तलाक को मौसूफ किया, कान बाइनन, तो तलाक बाइन होगी, यानी तलाक का वसफ भी बढ़ जाएगा। तलाक रजई तो आम तलाक है और जब वसफ बढ़ाएगा तो अब तलाक के अंदर भी शिद्दत आ जाएगी उसी के मुताबिक, अब तलाक रजई ना रहेगी बल्कि वो क्या बन जाएगी, तलाक बाइन। मिसलु अन यकूला, मिसाल के तौर पर खावन यूं कहता है अंति तालिकुन बाइनुन, अंति तालिकुन बाइनुन, ते देखो तालिकुन के साथ बाइनुन की सिफत बढ़ा दी, तुझे ऐसी तलाक है बाइनुन जो जुदा करने वाली है तो तलाक बाइन होगी भाई। या अंति तालिकुन अलबत्ता, बत्तुन का माना भी कतउन है, अलबत्ता यानी काटने वाली तलाक, तो लिहाजा अंति तालिकुन अलबत्ता इससे भी तलाक बाइन हो जाएगी। बत्तुन का माना काटना है, और तलाक रजई निकाह को काटती है या तलाक बाइन निकाह को काटती है, बाइन काटती है, तो इसलिए यहां पर तलाक बाइन होगी। तो कहते हैं मिसलु अन यकूला, मिसाल के तौर पर खावन यूं कहता है अंति तालिकुन बाइनुन औ अलबत्ता, तो इस सूरत में तलाक बाइन होगी। वकाल शाफियु रहमहुल्लाहु ताला यकउ रजईयन इजा कान बाद दुखूली, इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं तलाक रजई वाके होगी चाहे बाइनुन या अलबत्ता को भी साथ मिला दे, फिर भी रजई वाके होगी इजा कान बाद दुखूली, जब यह तलाक सोहबत के बाद हो, रजई ही होगी भाई। क्यों? ये दुखूल के बाद की कैद क्यों लगाई, सोहबत के बाद की कैद क्यों लगाई? वजह यह कि गैर मदखूल भी हा में आप पढ़ चुके हैं, वह औरत जिसे खावन ने भी सोहबत ही नहीं की उसको तलाक रजई भी देगा वह खुद बखुद क्या हो जाएगी, बाइन हो जाएगी, तलाक देते ही फौरन निकाह टूट गया, अब उस पर इद्दत भी नहीं है। तो गैर मदखूल बिहा को रजई भी देगा वो क्या हो जाएगी, तलाक बाइन हो जाएगी। तो इसीलिए कहा इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं यकउ रजईयन के तलाक रजई वाके होगी इजा कान बाद दुखूली, जबकि ये सोहबत के बाद हो, लिअन्न तलाक, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील वो फरमाते हैं कि शरीयत ने तलाक के बाद रजअत को साबित किया है कि तलाक के बाद खावंद रुजू कर सकता है इद्दत के अंदर अंदर, तो तलाक के पीछे रुजू आता है, और यह शख्स तलाक बाइन देकर क्या करना चाहता है, उस रुजू को साकित करना चाहता है, यानी शरीयत के हुक्म को बदलना चाहता है, लिहाजा इसके कौल का कोई एतबार नहीं और रुजू का हक खावन को फिर भी रहेगा। मालूम हुआ अंति तालिकुन बाइनुन कह दे या अंति तालिकुन अलबत्ता कह दे, दोनों सूरतों में रुजू का हक फिर भी खावन के पास रहेगा, तो तलाक रजई होगी, तलाक बाइन नहीं होगी। वजह समझ में आ गई, क्या वजह? कि शरीयत ने तलाक के बाद रुजू का हक दिया है खावंद को, और यह कहने वाला अंतितालिकुन बाइनुन या अंतितालिकुन अलबत्ता कहकर शरीयत के उस हुक्म को बदलना चाहता है कि मैं ऐसी तलाक दूं जिसके बाद मुझे रोजों का हक ही ना रहे। भाई आप कैसे शरीयत का हुक्म बदल सकते हैं? आपको शरीयत का हुक्म बदलने की इजाजत नहीं होगी, लिहाजा रुजू का हक अभी भी खावन के पास रहेगा। मालूम हुआ अंतितालिकुन बाइनुन या अंतितालिकुन अलबत्ता कहने से तलाक बाइन नहीं होगी, तलाक रजई ही होगी। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्लाह और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं यकौ रजईयन इदा कान बाद दुखूली के तलाक रजई वाकई होगी जब यह सोहबत के बाद हो। लिअन्न तलाक शुरिअ मुअक्किबन लिरजअति, अक्कब युअक्किबु ताकीब का माना है एक चीज को दूसरी चीज के पीछे लाना, बाद में लाना। तो लिअन्न तलाक शुरिअ इसलिए क्योंकि तलाक जो है वह मशरू हुई है, मुअक्किबन लिरजअति कि यह रुजू को अपने पीछे लाती है। तलाक किस तरीके पर मशरू हुई है, किस तरीके पर शरीयत ने इजाजत दी है कि इसके पीछे रुजू का हुक्म आएगा, खावन रुजू कर सकेगा। तो कहते हैं लिअन्न तलाक शुरिअ मुअक्किबन लिरजअति इसलिए क्योंकि तलाक मशरू हुई है कि वो अपने पीछे रजअत को लाती है। फकान वस्फुहु बिल बैनूनति खिलाफ अल मशरू, लिहाजा खावन का तलाक को बैनूनत के साथ मौसूफ करना, बैनूनत यानी जुदाई, तो खावन का तलाक को जुदाई के साथ मौसूफ करना खिलाफ अल मशरू, ये मशरू तरीके के खिलाफ है, मशरू तलाक के खिलाफ होगा। फैल हो लिहाजा ये लगव हो जाएगा, इसका कोई एतबार नहीं, वो शरई हुक्म को नहीं बदल सकता। कमा इदा काला, कहते हैं ये इसी तरह है जैसे खावंद अपनी बीवी से कहता है अंति तालिकुन अला अल्लाह रज अतली अलई की, खावंद बीवी से कहता है अंति तालिकुन तुझे तलाक है, अला अल्लाह रज अतली अलई की, अला शर्त के लिए आता है, अला इस शर्त पर अल्ला रजाता ली अलई की कि मुझे तुझ पर रुजो का हक नहीं है, मुझे तुझ पर रुजो का हक। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं ये इसी तरह है खावन बीवी से कहे तुझे तलाक है इस शर्त पर कि मुझे रुजो का हक नहीं होगा, और ए अहनाफ आपके नजदीक भी इस सूरत में तलाक रजई ही होगी। खावंद का यह कहना इस शर्त पर कि मुझे रुजू का हक नहीं होगा, यह तो शरीयत के हुक्म को बदल रहा है, तलाक के बाद तो खावंद को रुजू का हक होता है, लिहाजा ये इसका कोई एतबार नहीं, और ए अहनाफ आपके नजदीक भी इस सूरत के अंदर तलाक रजई होगी। जब खावंद ने क्या कहा अंति तालिकुन अला अल्लाह रजअतली अलैकी कि तुम्हें तलाक है इस शर्त पर कि मुझे तुम पर रुजू का हक नहीं, इस सूरत में ए अहनाफ आपके नजदीक भी तलाक रजई होगी, तो ये अंति तालिकुन बाइनुन भी इसी तरह है। वह बाइनुन लाकर खावन ये कहना चाह रहा है कि इस शर्त पर मैं तलाक दे रहा हूं कि मुझे रुजू का हक नहीं होगा, लिहाजा उसकी ये नीयत लग होगी। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं कमा इदा काला, ये इसी तरह है जैसे कोई शख्स कहता है अंति तालिकुन अला अल्लाह रजअतली अलैकी कि तुझे तलाक है इस शर्त पर कि मेरे लिए तुझ पर रुजू का हक नहीं होगा। वलाना, अब हमारी दलील आ गई, वलाना और हमारी दलील यह है कि अन्नहु वसफहु बिमा यहतमिलुहु लफ्जुहु कि खावन ने तलाक को मौसूफ किया है उस चीज के साथ जिसका लफ्ज भी एहतमाल रखता है। अंति तालिकुन तुझे तलाक है, ये रजई का भी एहतमाल रखता है और बैनूनत का भी एहतमाल रखता है, और लफ्ज के अंदर जब एक एहतमाल हो तो उसको किसी लफ्ज के जरिए मुतायन करने से वो मुतायन हो जाता है, मुतायन करने से वो मुतायन हो जाता है। अंति तालिकुन में तलाक रजई का भी एहतमाल और तलाक बाइन का भी एहतमाल, तो जब वो आगे बाइनून का लफ्ज ले आया तो लफ्ज के एहतमाल में से ही एक एहतमाल को मुतायन कर दिया। नहीं तवज्जो, फिर सुनो, हमारी दलील चल रही है अंति तालिकुन के अंदर हम कहते हैं तलाक रजई का भी एहतमाल, तलाक बाइन का भी एहतमाल है, और आगे वो बाइनून या अलबत्ता का लफ्ज ले आता है तो इसने वही जो एक एहतमाल तलाक के अंदर था बाइन वाला उसी को मुतायन कर दिया कि यहां मेरी मुराद तलाक से रजई नहीं है बल्कि कौन सी है, बाइन है। फिर सुनो, अंति तालिकुन में दो एहतमाल, कौन से एहतमाल, रजई भी और बाइन भी, रजई भी और बाइन भी। तो अगर अंति तालिकुन के आगे वो कुछ भी ना लाए तो रजई अदना दर्जा है और बाइन आला दर्जा है, तो अदना खुद बखुद साबित हो जाता है, तलाक रजई हो जाती है। लेकिन अगर वो बाइन का या अलबत्ता का लफ्ज आगे लाता है तो ये बाइन का एहतमाल तो तलाक के अंदर मौजूद था, तो उसी एक एहतमाल को इस बाइन लफ्ज के जरिए क्या कर दिया उसने, मुतायन कर दिया कि इस तलाक से मेरी मुराद रजई वाली तलाक नहीं है बल्कि कौन सी वाली है, बाइन वाली है। और लफ्ज के अंदर जब एक चीज का एहतमाल हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मुतायन कर सकते हैं। तो कहते हैं वलाना, हमारी दलील यह है कि अन्नहु वसफहु बिमा यहतमिलुहु लफ्जुहु, के खावन ने इस तलाक को मौसूफ किया है उस चीज के साथ जिसका ये लफ्ज भी एहतमाल रखता है, इस तलाक के अंदर भी रजई का भी एहतमाल और बाइन का भी एहतमाल। सवाल, अंती तालिकुन में बाइन का एहतमाल कहां से आप ले आए, ये तो आपने एक नई बात कर दी, ये तो आपने नई बात कर दी। तो कहते हैं भाई आप देखते नहीं, खावंद गैर मदखूल बिहा औरत को अंती तालिकुन कहता है, जिससे अभी सोहबत नहीं की, जिसकी अभी रुखसती नहीं हुई, उसको खावंद अंती तालिकुन कहेगा, कौन सी तलाक होगी, तलाक बाइन हो जाएगी, निकाह टूट जाएगा। देखा, मालूम हुआ इस अंती तालिकुन में बाइन का एहतमाल था, जबी तो हुई बाइन तलाक, वरना ना होती भाई। और नीस खावन अगर मदखूल बिहा जो है जिसे सोहबत कर चुका है उसको अंती तालिकुन कहता है
जी।
तो औरत को तलाक हो गई और औरत इद्दत गुजारेगी, इस इद्दत के अंदर खावन रुजू कर सकता है, लेकिन अगर खावन ने रुजू न किया और इद्दत गुजर गई तो औरत जुदा हो जाएगी
जी।
औरत और मुझे बताइए ये जो औरत जुदा हुई ये उसी अंती तालिकुन से हुई या किसी और तलाक से हुई, उसी अंती तालिकुन से हुई, उसी अंती तालिकुन से ये जुदाई आई है। मालूम अंती तालिकुन के अंदर रजई का भी एहतमाल है और बाइन का भी एहतमाल है। तो जब लफ्ज के अंदर एक चीज का एहतमाल हो तो उसको मुतकल्लिम मुतायन कर सकता है, तो बाइनुन या अलबत्ता का लफ्ज लाकर उसने इसको मुतायन कर दिया भाई। तो कहते हैं वलाना, हमारी दलील यह है कि अन्नहु वसफहु बिमा यहतमिलुहु लफ्जुहु, के खावन ने तलाक को मौसूफ किया है उस सिफत के साथ कि जिसका यह लफ्ज एहतमाल भी रखता है, यानी बैनूनत का इसमें एहतमाल भी है। अला तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्नल बैनूनत कबल दुखूली व बादल इद्दती तहसुलु बिही, क्या आप देखते नहीं, अन्नल बैनूनत कबल दुखूली, कि वो जुदाई जो सोहबत से पहले आती है, व बादल इद्दती, इसी तरह वो जुदाई जो इद्दत के बाद आती है, ताहसुलु बिही, वो इसी अंती तालिकुन से हासिल होती है। मालूम है इसके अंदर बैनूनत का भी एहतमाल है। फयकूनु हादल वसफुली तायीनी अहदिल मुहतमलैनी, तो लिहाजा ये जो वसफ खावंद लाया है, यानी बाइनुन या अलबत्ता था, ये जो वसफ खावंद लाया है, लितायीनी अहदिल मुहतमलैनी, ये उन दो मुहतमलों में से एक की तायीन के लिए लाया है। व मसअलतुर रजअती ममनूअतुन, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे जैसे खावंद बीवी से कहे कि तुझे तलाक है इस शर्त पर कि मैं रुजू नहीं कर सकता, तुझे तलाक है इस शर्त पर कि मैं रुजू नहीं कर सकता, कि ये ए अहनाफ आपके नजदीक भी सूरत में तलाक रजई होगी, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि वह मसअलतुर रजअति ममनूअतुन, कि रजअत वाला मसला ममनू है, यानी हमें तस्लीम नहीं, आप हमें कह रहे हैं कि अहनाफ आपके नजदीक भी सूरत में तलाक रजई होगी, जब खावन बीवी से क्या कहे कि तुझे तलाक है इस शर्त पर कि मैं रुजू नहीं कर सकता, खावन यह शर्त जिक्र कर देता है, तो हमें यह तस्लीम नहीं, हमारे नजदीक की सूरत में रजई नहीं होगी, बाइन होगी, हमारे नजदीक बाइन होगी, लिहाजा इसको आप दलील के तौर पर पेश नहीं कर सकते। यह माना है वह मसअलतुर रजअति ममनूअतुन, और रुजू वाला मसला वो ममनू है, यानी हमें तस्लीम नहीं। फतकउ वाहिदतुन बाइनतुन इदा लम तकुन लहू नियतुन, अच्छा इधर देखिए, अंती तालिकुन बाइनुन, अंती तालिकुन बाइनुन, तो खावन ने बीवी से कहा है अंती तालिकुन बाइनुन या अंती तालिकुन अलबत्ता था, तो आपको बतलाएंगे अगर खावन इसके लिए कोई नियत ना करे तो भी एक तलाक हो जाएगी और तलाक बाइन होगी, क्योंकि यह सरीह है और सरीह के अंदर नियत की जरूरत नहीं, इसके अंदर और कोई माना है ही नहीं, अंती तालिकुन बाइनुन का माना है वह तलाक दे रहा है, लिहाजा वह नियत करे या ना करे एक तलाक बाइन हो जाएगी। और अगर उसने एक की नियत की फिर भी एक ही होगी, और अगर उसने दो की नियत की फिर भी एक ही होगी, फिर भी एक ही होगी। लेकिन अगर उसने तीन की नियत की तो तीन भी हो जाएंगी, अंत तालिकुन बाइनुन या अंत तालिकुन अलबत्ता था, तो इन सूरत में तीन की नियत की तो तीन भी हो जाएंगी
जी।
इस वजह से तीन होंगी कि ये दरअसल सिफत है मस्दर महजूफ की
जी।
ये बाइनुन और अलबत्ता था ये किसकी सिफत है? मस्दर महजूफ की। और मस्दर वो इसमें जिन्स होता है, उसका इतलाक कलील पर भी होता है और पूरी जिन्स पर भी होता है, और पूरी जिनसे तलाक कितनी है? तीन। लिहाजा तीन की नियत भी यहां सही है
जी।
तीन की नियत भी, मसलन खावन ने बीवी से कहा है आंती तालिकुन बाइनुन, असल में गोया खावन यूं कह रहा है आंती तालिकुन तलाकन हिया बाइनुन, आंती तालिकुन तलाकन हिया बाइनुन या हुआ बाइनुन, तुझे ऐसी तलाक है कि वो बाइन है। तो इसी तरह ये अलबत्ता था, इसको भी क्या करेंगे? मस्दर महजूफ की सिफत बनाएंगे। अंत तालिकुन तलाकन अलबत्ता था या अत्तलाक अलबत्ता था, तो लिहाजा यहां तलाक मस्दर यहां महजूफ निकाल लेंगे। तो मालूम हुआ ये सिफत है मस्दर महजूफ की, और मस्दर वो तो इसमें जिन्स है, उसका इतलाक कलील पर यानी एक पर भी सही है और पूरी जिन्स यानी तीन तलाकों पर भी सही है। तो तीन की नियत करेगा तो तीन तलाकें भी हो जाएंगी, या तो ये मस्दर की सिफत है इस वजह से तीन की नियत भी सही है, या इस वजह से कि जुदाई जो है बाइनुन का माना भी जुदाई और बत्तुन का माना भी जुदाई, बत्तुन का माना भी काटना जुदा करना, तो दोनों में जुदाई का माना है। और आगे साहिबे हिदाया भी आपको बतलाएंगे जुदाई दो किस्म की है, एक एक बैनूनत खफीफा है एक गलीजा है। बीवी से खावन की जुदाई आती है तो एक बैनूनत खफीफा है यानी हल्की जुदाई है, और उसमें दोबारा निकाह की गुंजाइश होती है। खावन ने एक या दो तलाकें दी हैं और तलाकें बाइन दी है, तो खावन अभी भी निकाह कर सकता है इस औरत से, निकाह तो टूट गया लेकिन नया निकाह कर सकता है, और अब इसको सारी जिंदगी एक तलाक का हक होगा। तो ये बैनूनत खफीफा है, और एक बैनूनत गलीजा है सख्त जुदाई, वो तीन तलाकों की सूरत में आती है कि जिसमें फिर खावन दोबारा उस औरत से निकाह भी नहीं कर सकता, इल्ला ये कि ये औरत किसी और शख्स से निकाह करे और वो इसके साथ सोहबत भी करे। याद रखो ये सोहबत भी दूसरे खावन की जरूरी है, सिर्फ किसी से निकाह करे और वो तलाक दे दें नहीं, फिर पहले खावंद के लिए हलाल नहीं होगी भाई। तो दूसरे खावंद से निकाह करे और वो सोहबत भी करे, फिर किसी वक्त उसका इंतकाल हो जाता है या वो बीवी को तलाक दे देता है तो फिर ये पहले खावंद से निकाह कर सकती है। तो मालूम हुआ बैनूनत और जुदाई भी कितनी किस्म पर है? दो, एक बैनूनत खफीफा एक बैनूनत गलीजा, और ये बाइनुन और अलबत्ता में दोनों का इस्तेमाल है, इसलिए बैनूनत जुदाई मुराद है, जुदाई हल्की भी हो सकती है यानी एक तलाक, और जुदाई सख्त भी हो सकती है यानी तीन तलाकें, तो तीन की भी नियत कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फतकउ वाहिदतुन बाइनतुन इदा लम तकुन लहू नियतुन, के एक बाइना तलाक वाके होगी जब इस शख्स की कोई नियत ना हो, औ नवसिनतैनी या इसने दो की नियत की है तब भी एक ही वाके होगी, अम्मा इदा नवस सलासा फसलासुन लिमा मर्रा मिन कबलु, अम्मा इदा नवस सलासा और बाकी खावन ने जब तीन की नियत की है, फसलासुन तो तीन तलाकें वाके हो जाएंगी, लिमा मर्रा मिन कबलू उस वजह से जो माकबल में बात गुजर गई, कि यहां मस्दर महजूफ है और मस्दर से पूरी जिन्स का इरादा भी सही है भाई। वलौ आना बिकौली ही, दूसरी सूरत, खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन बाइनुन और कहता है तालिकुन के जरिए मेरी एक तलाक की नियत थी और बाइनुन के जरिए मेरी दूसरी तलाक की नियत थी, तो याद रखो इस सूरत में फिर दो तलाकें वाकई हो जाएंगी। या इसी तरह खावंद कहता है अंति तालिकुन अलबत्ता था और कहता है तालिकुन के जरिए मेरी एक तलाक की नियत थी और अलबत्ता था के जरिए मेरी दूसरी तलाक की नियत थी, तो इस सूरत में भी दो तलाकें वाकई हो जाएंगी। वलौ अना बि कौलिही अंति तालिकुन वाहिदतन, और अगर खावन ने इरादा किया अपने कौल अंति तालिकुन के जरिए वाहिदतन एक तलाक का, व बि कौलिही बाइनुन औ अलबत्तता उखरा और अपने कौल बाइनुन या अलबत्तता के जरिए दूसरी तलाक का, यकउ तत्लीकतानि बाइनतानि, तो दो तलाक बाइन वाके हो जाएंगी, लिअन्न हादल वस्फ यस्लुहु लिब्तिदा इल्ईकाई, इसलिए क्योंकि यह वसफ सलाहियत रखता है इब्तिदा ईका की। खावंद अगर अपनी बीवी से यह कहता है अंति बाइनुन, अंति बाइनुन तू जुदा है, या अंति अलबत्तता तू जुदा है, तो याद रखो ये किनाया है, क्योंकि जुदा है इसका माना यह भी हो सकता है कि मैंने तुझे तलाक दे दी है तू मुझसे जुदा है, तलाक का भी इसमें इहतमाल, और नीज इसका यह माना भी हो सकता है कि तू और औरतों से जुदा है, यानी हुस्न जमाल में तेरे जैसी कोई भी नहीं, तो यह किनाया हुआ। क्या हुआ?
किनाया।
और किनाये के अंदर खावंद नीयत करे तो तलाक वाके हो जाती है। खावंद ने बीवी से कहा अंति बाइनुन और नीयत तलाक की तलाक हो जाएगी, या खावन ने बीवी से कहा अंति अलबत्ता था और नियत तलाक की तो तलाक वाके हो जाएगी। तो जब अंति बाइनुन अकेले के साथ ये तलाक हो जाती है, अंति अलबत्ता के साथ अकेले के साथ तलाक हो जाती है, तो यहां पर भी उसके साथ तलाक की नियत करना सही है भाई। यह माना है लिअन्न हादल वस्फ यस्लुहु लिइब्तिदा इल्ईका, इसलिए क्योंकि यह वसफ सलाहियत रखता है इब्तिदा ईका की, कि सिर्फ इसके जरिए ही इब्तिदाअन ईका तलाक कर दिया जाए, अंति बाइनुन कहा जाए और इसके जरिए इब्तिदा ईका की नियत की जाए कि इसे तलाक वाक हो जाए। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, कहते हैं वकदा इदा काला अंति तालिकुन अफहशत तलाकी, खावन बीवी से कहता है अंति तालिकुन अफहशत तलाक, अफहश का माना है हद से बढ़ी हुई, पीछे जिक्र हुआ था गबने फाहिश का जिक्र हुआ था, तो फाहिश का माना क्या होता है? हद से बड़ा हुआ, हद से ज्यादा। तो कहते हैं वकदा इदा काल अंति तालिकुन अफहशत तलाकी, के तुझे हद से बड़ी हुई तलाक है, तो इस सूरत में भी वकजा बतलाया, वकजा इसी तरह है जब खावन ने अंति तालिकुन अफहशत तलाक कहा, यानी इसमें भी तलाक बाइन हो जाएगी। तो कहते हैं वकदा और इसी तरह है, यानी तलाक बाइन हो जाएगी। इदा काल अंति तालिकुन अफहशत तलाकी, जब खावन ने बीवी से कहा तुझे हद से बड़ी हुई तलाक है, لأنه إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره, इसलिए क्योंकि तलाक को इस वसफ के साथ मौसूफ किया जाता है उसके असर के एतबार से, उसके अफहश तलाक हद से बड़ी हुई तलाक, तो ये उसके असर के एतबार से बतला रहा है। खुद तलाक वो तो गैर महसूस है, वो तो आंखों से नजर नहीं आती, लिहाजा वो मुराद नहीं है और उसके मौसूफ करने का कोई फायदा नहीं, बल्कि उसका असर मुराद है। और उसका असर किस तरह होगा कि रजाई के बजाय बाइन तलाक हो जाएगी भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु इन्नमा यूसफु बिहादल वस्फ बिएतिबारी असरिही, इसलिए क्योंकि तलाक जो है उसको इस वसफ यानी अफहश के वसफ के साथ मौसूफ किया जाता है उसके असर के एतबार से। वहुअल बैनूनत फिल हाली, और वो फिल हाल बैनूनत है। आम तलाक देगा तो वहां तो रुजू का हक है, इद्दत के बाद बैनूनत और जुदाई आएगी, लेकिन यहां इसका असर जाहिर होगा और फिलहाल ही बैनूनत आ जाएगी यानी तलाक बाइन हो जाएगी। यह माना है वहुअल बैनूनत फिलहाल, और वो फिलहाल ही जुदाई है यानी वो असर जो है। फसारक कौली ही बाइनुन, तो ये इसी तरह हो गया जैसे खावन का कौल बाइनुन था। वकदा इदा काल अखबसत तलाकी औ अस्वाहू, और इसी तरह है यानी तलाक बाइन हो जाएगी। इदा काल, जब खावन ने बीवी से कहा अखबसत तलाकी, अय अंति तालिकुन अखबसत तलाकी औ अस्वाहू, अखबस और अस्वा का दोनों का एक ही माना है बदतरीन भाई। अखबस का माना भी बदतरीन, अस्वा भाई अस्वा का भी क्या माना बदतरीन भाई। तो कहते हैं वकदा इदा काल अखबसत तलाकी औ अस्वाहू, और इसी तरह है यानी तलाक बाइन होगी जब खावन ने बीवी से कहा कि तुझे बदतरीन तलाक है। लिमा जकरना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दी कि इसके जरिए उसका असर बढ़ेगा, और असर का बढ़ना क्या है कि फिलहाल ही जुदाई हो जाएगी। वकदा इदा काला तलाक शैतानी औ तलाक अल बिदअती, اسی طرح اگر خاوند نے بیوی سے کہا انت طالق طلاق الشیطانی، تجھے شیطان والی طلاق ہے، او انت طالق طلاق البدعتی، تجھے بدعت والی طلاق ہے، تو اس صورت میں بھی طلاق بائن ہو جائے گی. اس لیے کیونکہ طلاق کی نسبت شیطان اور بدعت کی طرف کی، معلوم ہے خلاف سنت مراد ہے، اور سنت تو ہے طلاق رجعی دینا، اور اس کے مخالف کیا ہوگی؟ طلاق بائن ہوگی. بھائی تو کہتے ہیں وقادہ اذا قال، اور اسی طرح ہے یعنی طلاق بائن ہوگی، اذا قال جب خاوند نے بیوی سے کہا طلاق الشیطانی او طلاق البدعتی، لان الرجعی هو سنت، کیونکہ طلاق رجعی وہ تو سنت ہے، فیکون البدعت و طلاق الشیطانی بائنا، تو بدعت اور طلاق شیطان وہ طلاق بائن ہوگی. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے، فی قوله انت طالق للبدعت انه لا يكون بائنا الا بالنیت، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں انت طالق للبدعت، اس صورت میں طلاق بائن نہیں ہوگی بلکہ طلاق رجعی ہوگی، الا یہ کہ خاوند خود کہتا ہے میں نے بائن کی نیت کی تھی. خاوند اگر بائن کی نیت کرتا ہے پھر تو بائن ہو جائے گی، ویسے اسے بائن نہیں. بھئی کیوں نہیں بائن ہوگی؟ طلاق سنت تو رجعی ہوتی ہے، اور یہ بدعت کہہ رہا ہے تو بدعت سے تو رجعی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کون سی ہونی چاہیے؟ بائن ہونی. اس نے کیا کہا ہے؟ بدعت کہا ہے. بدعت کیا ہے؟ سنت کے مخالف ہے. سنت تو طلاق رجعی ہے، تو لیکن امام ابو یوسف کیا فرماتے ہیں؟ بدعت کی صورت میں بھی طلاق رجعی ہی ہوگی، الا یہ کہ خاوند باقاعدہ بائن کی نیت کرے پھر بائن ہو جائے گی. بھئی کیسے؟ یہ تو بدعت کیا ہے، پھر بھی آپ اس کو رجعی قرار دے رہے ہیں. کہتے ہیں بعض اوقات طلاق رجعی کو بھی بدعت کہتے ہیں، مثلا حیض میں طلاق دے دی. جب حیض میں طلاق دی، حیض میں تو طلاق دینا منع تھا بھائی، تو ہوئی تو رجعی طلاق ہی، البتہ بدعت ہے. معلوم ہوا طلاق بدعت رجعی بھی ہو سکتی ہے، تو رجعی ہی ہوگی الا یہ کہ خاوند بائن کی نیت کر لے. تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحمہ اللہ فی قوله انت طالق للبدعت، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے خاون کے قول انت طالق للبدعت کے بارے میں، کہ انہ لا یکون بائنا الا بالنیت، کہ یہ طلاق بائن نہیں ہوگی مگر خاون کی نیت سے ہی، لان البدعت قد تکون من حیث الایقاع فی حالت حیض، اس لیے کیونکہ بدعت جو ہے کبھی کبھار حالت حیض میں طلاق کے واقع کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہے، فلا بد من النیت، لہذا نیت کا ہونا ضروری ہے بائن کے لیے. وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہ اذا قال، کہ خاوند نے جب یوں کہا انت طالق للبدعت او طلاق الشیطانی، انت طالق للبدعت او انت طالق طلاق الشیطان کہا، تو دونوں صورتوں میں یکون رجعیا، طلاق کون سی ہوگی؟ رجعی ہوگی. لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالة الحيض، اس لیے کیونکہ یہ بدعت والا وصف کبھی طلاق میں پایا جاتا ہے حالت حیض میں، تو طلاق رجعی ہوگی بائن نہیں ہوگی. فلا يثبت البينونة بالشك، کی تو شک کی وجہ سے بینونت ثابت نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی. وكذا اذا قال كالجبل، خاوند نے بیوی سے کہا انت طالق كالجبل، تجھے پہاڑ جیسی طلاق ہے، یا مثل الجبل، تجھے طلاق ہے پہاڑ کے مثل، پہاڑ جیسی تجھے طلاق ہے، تو اس صورت میں بھی طلاق بائن ہوگی. کیا ہوگی؟ طلاق بائن ہوگی. معلوم ہوا عظمت کے اندر وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ جیسے پہاڑ بہت بڑا ہے، اسی طرح جو میں طلاق دے رہا ہوں وہ بھی عام طلاق نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ہے، تو وصف میں زیادتی آئی، لہذا بائن ہوگی رجعی نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں وقضا اذا قال کل جبلی، اور اسی طرح خاوند نے جب کہا کل جبل، لان تشبیہ بہ یوجب زیادۃ لا محالہ، اس لیے کیونکہ پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دینا یوجب زیادۃ، یہ زیادتی کو ثابت کرتا ہے کہ طلاق کے وصف میں زیادتی ہو رہی ہے، لا محالہ قطعی طور پر. پھر ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں لان تشبیہ بہ یوجب زیادہ لا محالہ، اس لیے کیونکہ پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دینا یہ زیادتی کو ثابت کرتا ہے، لا محالہ قطعی طور پر، وذلک باثبات زیادت الوصف، اور یہ وصف کی زیادتی کو ثابت کرنے سے ہی ہوگا. طلاق میں زیادتی تو آ رہی ہے، اور زیادتی کس اعتبار سے آئے؟ वसफ के एतबार से ज्यादती आएगी, तादाद के एतबार से ज्यादती नहीं आएगी, होगी एक ही तलाक, अलबत्ता रजई नहीं होगी बल्कि बाइन होगी। वकदा इदा काल मिसलल जबली, और इसी तरह है जब खावन ने कहा अंति तालिकुन मिसलल जबली लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कह दिया कि वसफ में ज्यादती आएगी, और वसफ में ज्यादती की यही सूरत है कि तलाक रजई ना हो बल्कि तलाक बाइन हो गई। वकाल अबू यूसुफ रहमुल्ला यकून रजईयन, इमाम अबू यूसुफ रहमुल्ला फरमाते हैं कि अगर खावन ने बीवी से कहा तुझे पहाड़ जैसी तलाक है तो भी तलाक रजई होगी, तो भी तलाक रजई। वो कहते हैं यहां तशबी बड़ा होने में नहीं है बल्कि तशबी वाहिद होने में है, जैसे पहाड़ एक है इसी तरह यह तलाक भी एक है, तो वाहिद होने में तशबी है, बड़ा होने में तशबी नहीं है। वकाल अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं यकून रजईयन के तलाक जो होगी वो रजई होगी, लिअन्न अल-जबल शयउन वाहिदुन, इसलिए क्योंकि पहाड़ एक चीज है, फकान तशबीहन बिही फी तवहुदिही, तो उसके साथ जो तशबी दी गई है फी तवहुदिही उसके एक होने में है, यानी एक तलाक है तुझे और वो रजई होगी। वलौ काल अलहा अंति तालिकुन अशद्द तलाकी औ का अल्फिन औ मिल अल बैती फहिय वाहिदतुन बाइनतुन इल्ला अय्यन विया सलासा। सूरत मसला ये, खामन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन अशद्द तलाकी, तुझे तलाक है सख्त तरीन तलाक, या कहता है अंति तालिकुन का अल्फिन, तुझे तलाक है हजार जैसी, तुझे तलाक है हजार जैसी, या खावन बीवी से कहता है अंति तालिकुन मिल अलबैती कि तुझे तलाक है घर भर कर, घर भर कर तुझे तलाक है, तो इस सूरत में हमारे फुकहा फरमाते हैं एक ही तलाक होगी और वो तलाक बाइन होगी। लेकिन अगर खावन ने तीन की नियत कर ली तो इन लफ्जों से तीन भी हो जाएंगी, इन लफ्जों से तीन भी हो जाएंगी। तो कहते हैं वलौ काल लहा अंति तालिकुन अशद्द तलाक, और अगर खावन ने बीवी से कहा तुझे सख्तरीन तलाक है, औ का अल्फिन या तुझे हजार की मिसल तलाक है, औ मिल अल बैती या घर भर के तुझे तलाक है, फहिया वाहिदतुन बाइनतुन, तो ये एक बाइना तलाक होगी, इल्ला अय्यन विया सलासा, मगर यह कि खावन तीन की नीयत कर ले। अम्मल अव्वलु, अब एक एक लफ्ज के बारे में अलग बहस करेंगे। तीन लफ्ज हैं यहां पर, अंति तालिकुन अशद्द तलाक, अंति तालिकुन का अल्फिन, और अंति तालिकुन मिल अल बैती, तो हर एक को अलग अलग बयान करेंगे। पहला लफ्ज क्या है, अंति तालिकुन अशद्द तलाक, तो इसके अंदर देखो अशद्द तलाक शिद्दत को बयान कर रहा है, और शिद्दत वसफ में होगी, सख्त तलाक, सख्त तलाक कौन सी है, रजई या बाइन, बाइन है कि उसे फौरन निकाह टूट जाता है, तो वसफ के अंदर वो शिद्दत को बयान कर रहा है लिहाजा तलाक बाइन होगी। और तीन की नियत करना चाहे तीन भी हो सकती हैं, क्यों, इसने क्योंकि उसने क्या लफ्ज कहा है, अंति तालिकुन अशद्द तलाकी, तो अशद्द तलाक देखो मस्तर आ रहा है, क्या रहा है मस्तर, और मस्तर क्या है इसमें जिंस, और इसमें जिंस का इतलाक कलील पर भी होता है और कसीर यानी पूरी जिंस पर भी, तो पूरी जिंस यानी तीन का इरादा भी वो कर सकता है। यह था पहले लफ्ज के बारे में, अंति तालिकुन अशद्द तलाक के बारे में। तो कहते हैं अम्मल अव्वल, तो जो पहला लफ्ज है यानी अंति तालिकुन अशद्द तलाक का जो लफ्ज है, फली अन्नहु वसफहु बिशिद्दति, इसलिए क्योंकि खावन ने तलाक को मौसूफ किया है शिद्दत यानी सख्ती के साथ, वहु अल बाइनु, और सख्त तलाक कौन सी है, बाइन है, लिअन्नहु ला यहतमिलु लिंतिकाज वल इर्तिफाजा, इंतिकाज का माना टूटना, इर्तिफाज का माना भी टूटना रद्द हो जाना, तो ये जो तलाक बाइन है ये टूटने या रद्द होने का इहतमाल नहीं रखती, लेकिन तलाक रजई वो टूटने का इहतमाल रखती है कि खावन फिर रुजू कर ले, जबकि तलाक बाइन में खावन रुजू कर ही नहीं सकता, वहां अगर दोबारा औरत को रखना है नया निकाह करना पड़ेगा, नया महर मुकरर करना पड़ेगा, तो मालूम हुआ टूटने और उठने का इहतमाल बाइन में नहीं है रजई में है, तो सख्त तलाक कौन सी हुई, बाइन हुई भाई। तो कहते हैं फली अन्नहु वसफहु बिशिद्दती, क्योंकि खावन ने इस तलाक को मौसूफ किया है शिद्दत के साथ, वहुअल बाइन, और वो तलाक बाइन है, लिअन्नहु ला यहतमिलुल इंतिकाज वल इर्तिफाज़, इसलिए क्योंकि ये तलाक बाइन जो है वो टूटने और उठ जाने का इहतमाल नहीं रखती। अम्मर रजई फयहतमिलुहु, जबकि बाकी तलाक रजई जो है वो टूटने और उठने का इहतमाल रखती है। वह इन्नमा तसिहु अंति तालिक अशद तलाक, इससे तलाक बाइन होगी। और तीन की नीयत भी सही है, वो क्यों सही है अब वो बयान कर रहे हैं, मैंने वजह बयान कर दी। तीन की नीयत क्यों सही, क्योंकि इसके अंदर मसदर जिक्र है अशद तलाक भाई। तो कहते हैं वह इन्नमा तसिहु नीयत उस सलासी, और तीन की नीयत भी सही है लिजिक्र हिल मसदरा, बवजह खावंद के मसदर को जिक्र कर देने के। वह अम्मसानी, दूसरी तलाक भाई कौन सी थी, अंति तालिकुन का अल्फिन, तुझे तलाक है हजार के मिसल, उसमें एक तलाक बाइन तो जरूर होगी, और अगर तीन की नीयत करेगा तो तीन भी वाके हो जाएंगी। अब उसको बयान कर रहे हैं, कहते हैं वह अम्मसानी, और बाकी दूसरी तलाक जो है फली अन्नहु कद युरादु बिहादत तशबीहु फिल कुव्वति तारतम व फिल अददी उखरा, कहते हैं ये जो अल्फ को जो जिक्र किया जाता है, अल्फ को कभी कभार कुव्वत के तौर पर अल्फ के साथ तशबीह दी जाती है, और कभी इसके जरिए आदद में तशबीह दी जाती है। अंति तालिकुन का अल्फिन, तुझे तलाक है हजार जैसी, तो ये हजार के साथ जो तशबीह दी जा रही है, कभी कुव्वत के एतबार से तशबीह मकसूद होती है, जैसे हजार में कुव्वत ज्यादा है इसी तरह इस चीज में भी कुव्वत ज्यादा है। अरब के अंदर याद रखो जो बड़े बड़े बहादुर होते थे, जो बहुत जिनकी बहादुरी की शोहरत होती थी, उस उनके बारे में लोग कहते थे ये हजार आदमियों के बराबर है
जी।
क्या कहते थे,
हजार
आदमियों के बराबर है, देखो ये एक आदमी है और कहते थे ये हजार के बराबर है, यानी कुव्वत के अंदर, किस चीज में कुव्वत के अंदर। चुनाचे रिवायात में आता है हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो जिहाद में एक मौके पर मुखालिफीन की तरफ से बहुत बड़ा लश्कर मुकाबले पर आया, ईरान की बहुत बड़ी फौज थी भाई, फारिस भाई, फारिस कई लाख पर मुश्तमिल फौज थी। तो कदीम जमाने में जंग का तरीका यह था कि दोनों लश्कर आमने सामने आकर पड़ाव डाल देते, और फिर हर रोज सुबह लड़ाई शुरू होती और शाम तक जारी रहती, फिर शाम को लड़ाई रुक जाती थी भाई, और फिर वो जख्मियों वगैरह को संभालते, अगले दिन फिर उनकी तरफ से कुछ लोग निकलते, सफें बनाकर खड़े हो जाते, इधर मुसलमानों की तरफ से निकलते, और फिर जंग होती थी भाई। तो पहले दिन जो उनकी तरफ से लड़ने के लिए आए 60,000, यानी बाकी लश्कर तो लाखों में था, वो पीछे था, 60,000 आदमी उनमें से निकलकर आए, सफें बना ली, असलहे से लेस हैं, असलहे में छुपे हुए हैं, और अब जंग के लिए तैयार खड़े हो गए। हज़रत खालिद इब्ने वलीद कमांडर इन चीफ थे मुसलमानों के भाई, हज़रत खालिद इब्ने वलीद अपने लश्कर के सामने चक्कर लगा रहे हैं, और एक को इशारा करते हैं आओ भाई तुम आगे आ जाओ, फिर दूसरे को इशारा करते हैं आओ भाई तुम आगे आ जाओ, यहां तक कि 30 आदमी निकाल लिए, 30 आदमी निकाल लिए और कहने लगे आओ चलो अब लड़ने चलें। उधर 60,000 हैं, इधर 30 हैं, आप सोचें तो सही, 30 आदमी तो एक छोटे से कमरे के अंदर आ जाते हैं, और 60,000 कितनी ही बड़ी तादाद है भाई। तो साथियों ने कहा कि हजरत ये तो मुनासिब नहीं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन हजरत खालिद मान ही नहीं रहे कि नहीं इन्हीं 30 को लेकर मैं लड़ूंगा इनके साथ। आखिर बहुत ज्यादा साथियों के इसरार पर मजबूर होकर आपने इसी तरह के 30 मजीद और नौजवान निकाल लिए, और वो थे 60,000 इधर 60, और फरमाया बस भाई इससे ज्यादा मैं एक आदमी नहीं लेकर जाऊंगा। और ये जो 60 आदमी हजरत खालिद इब्ने वलीद ने निकाले थे, इनमें से हर एक अरब के अंदर मशहूर था कि ये 1,000 जवानों के बराबर है भाई। तो ये चोटी के बहादुरों को लेकर, 60 अफराद को लेकर हजरत खालिद इब्ने वलीद मैदान में निकल आए और कुफार से जंग शुरू कर दी। तो कहते हैं मुसलमान उनके लश्कर में जिस तरफ का रुख करते थे उनकी सफों को उल्टा देते थे, चुनाचे शाम तक जंग होती रही। आप जरा तसव्वुर तो करें कि जंग हो रही है और तलवारों से हो रही है, वो आपको कत्ल करना चाहते हैं, आप उनको कत्ल करना चाहते हैं, लिहाजा आपका हर वार पूरे जोर और शोर के साथ होगा कि जो मुकाबिल है ताकि वो बचे ना, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगा भाई। और इन सहाबा की और इन लोगों की आप तलवारबाजी के अंदर महारत का अंदाजा लगाएं, सुबह से शाम तक ये तलवार चला रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं। हालांकि तलवार, तलवार का तो अच्छा खासा वजन होता है भाई, और फिर उसको आप चंद चक्कर भी दे दें तो शायद आपके बाजू में कई दिन तक दर्द रहे भाई। कितनी इसकी उन्होंने मशक की होगी कि सुबह से शाम तक लड़ते रहे, और शाम को फिर जब वापसी हुई तो मुसलमानों में से सिर्फ एक या दो शहीद हुए थे, एक या दो ही गालिबन गिरफ्तार हुए थे, और सैकड़ों दुश्मनों को इन्होंने कत्ल कर दिया था भाई। बात समझ में आ गई। तो ये अरब के अंदर जो बड़ा बहादुर होता तो उसको हजार के साथ तशबीह दी जाती थी। तो बात चल रही है कि खामन ने बीवी से कहा, अंत तालिकुन का अल्फी, तुझे हजार के जैसी तलाक है। तो इस हजार के जरिए कभी कुव्वत के अंदर तशबीह मकसूद होती है और कभी अदद के अंदर, तवज्जो है। तो कुव्वत के अंदर अगर तशबीह मकसूद है, मालूम हुआ सख्त तलाक देना चाहता है, कुव्वत वाली तलाक देना चाहता है, और वह तो बाइन है, उसके जरिए निकाह फौरन टूट जाता है। और अगर अदद का इरादा किया जाएगा तो कहने का मतलब है तुझे हजार तलाकें हैं लेकिन तलाकों की तादाद तो ज्यादा से ज्यादा तीन है, तो लिहाजा सिर्फ तीन वाकई हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह अम्मसानी, और जो दूसरा लफ्ज है यानी अंति तालिकुन का अल्फिन, ये वाला जो लफ्ज है, फली अन्नहु कद युरादु बिहादत तशबीहु फिल कुव्वति तारतन, इसलिए क्योंकि कभी कभार इस तशबीह के जरिए इरादा किया जाता है कुव्वत में तारतन कभी कभार, व फिल अदद उखरा, और कभी अदद के अंदर तशबीह का इरादा किया जाता है उखरा दूसरी मरतबा, ऐ तारतन उखरा, व फिल अदद तारतन उखरा, और दूसरे मौके पर इसमें आदत का इरादा किया जाता है, युकालु अरबी जुबान में कहा जाता है हुआ अल्फु रजुलिन, वो हजार आदमी है यानी हजार आदमियों के बराबर है, वह युरादु बिहिल कुव्वतु, और इसके जरिए कुव्वत का इरादा किया जाता है, फयसिहु नियतुल अमरैनी, तो दोनों अमरों की नीयत सही है, कुव्वत का इरादा भी यहां ठीक, और कुव्वत का इरादा किया तो एक तलाक बाइन हो जाएगी, और अदद का इरादा भी सही, और अदद की सूरत में फिर तीन तलाकें हो जाएंगी भाई। तो कहते हैं फयसिहु नियतुल अमरैनी, तो दोनों अमरों की नियत सही है यानी कुव्वत की भी और अदद की भी, व इंद फुकदानिहा जी, तो भाई दोनों की नियत सही है, कुव्वत की नियत भी सही और अदद की नियत भी सही, लेकिन अगर नियत नहीं है किसी भी चीज की तो फिर एक बाइन तो कम अज कम जरूर हो जाएगी। अदना, अदना इस लफ्ज से अंति तालिकुन का अल्फिन, अदना एक है और ज्यादा से ज्यादा तीन है, कुव्वत की नियत करे तो एक होगी और अदद की नियत करे तो तीन होंगी, तो जब कोई नियत ना हो तो अकल तो जरूर साबित हो जाएगी यानी एक तलाक तो जरूर हो जाएगी भाई। यह माना है वाइंद फुकदानिहा, और जब नियत ना पाई जाए, यसबुतु अकल लुहुमा, तो इन दोनों में से जो अकल है यानी एक तलाक बाइन वो तो जरूर साबित हो जाएगी। وعن محمد رحمه الله انه يقع الثلاث عند عدم النيه, امام محمد رحمه الله سے ایک روایت ہے کہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی جب کوئی نیت نہ ہو, جب کوئی نیت نہ ہو انت طالق کا الفین میں تو پھر تین واقع ہو جائیں گی, لانه عدد, کیونکہ الف کیا ہے عدد ہے, لہذا عدد میں تشبیہ مقصود ہے, تو لہذا ये तो तकाजा करता है हजार तलाकें होनी चाहिए लेकिन तलाकें तो ज्यादा से ज्यादा हैं ही कितनी तीन, लिहाजा तीन वाके हो जाएंगी जब कोई नियत ना हो। यह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से एक रिवायत है भाई। तो कहते हैं वान मोहम्मद रहमहुल्लाह अन्नहु यकउ सलासु इंदा अदमि नियति, के तीन तलाकें वाके हो जाएंगी नियत ना होते वक्त, लिअन्नहु अददुन, क्योंकि ये अल्फ जो है ये अदद है, फयुरादु बिहि तशबीहु फिल अददि जाहिरन, तो इसके जरिए अदद में ही तशबीह मुराद होगी जाहिरन जाहिरी तौर पर, फसार कमा इदा काला, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे इस शख्स ने यूं कहा हो, अंति तालिकुन का अददि अल्फिन, कि तुझे तलाक है हजार के अदद के मिसल, और इसके अंदर तो बिल इत्तेफाक तीन तलाकें होती हैं, अंति तालिकुन का अददी अल्फिन, देखो यहां कुव्वत का इरादा नहीं हो सकता क्योंकि खुद अदद का लफ्ज खावंद ला रहा है, अंति तालिकुन का अददी अल्फिन, और यहां बिल इत्तेफाक हमारे तीनों इमा के नजदीक तीन तलाकें हो जाएंगी, तो का अल्फिन कहना भी इसी तरह है का आददी अल्फिन कहना, तो लिहाजा जैसे का आददी अल्फिन में तीन तलाकें हैं तो का अल्फिन में भी तीन तलाकें होंगी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं। तो फसार कमा इदा काला, तो ये इसी तरह हो गया जैसे खामन ने यूं कहा हो अंत तालिक उनका आददी अल्फिन के तुझे तलाक है जैसे कि हजार का आदद है। वह अम्मा सालिस, अब तीसरा लफ्ज आ गया, तीसरा लफ्ज क्या था मिल अलबैती अंत तालिक मिल अलबैती कहते हैं। वह अम्मा सालिस और तीसरा लफ्ज जो है फली अन नशे अकद यमला उलबैता लि आजमतिन फी नफसी ही, तो कहते हैं फली अन नशे अकद यमला उलबैता लि आजमतिन फी नफसी ही, इसलिए क्योंकि कोई चीज कभी कभार पूरे घर को भर देती है लि आजमतिन फी नफसी ही अपनी जात में बड़ा होने की वजह से, कोई चीज बड़ी होती है वो पूरे घर को भर देती है। वकद यमला उली कसरती ही, और कभी कभार कोई चीज घर को भर देती है लि कसरती ही अपनी कसरत की वजह से, तो लिहाजा इसके अंदर भी दोनों इहतमाल हैं, आजमत का भी कि बड़ी तलाक है, मुराद यह है बड़ी तलाक है जैसे कोई बड़ी चीज एक ही चीज पूरे घर को भर दे, और नीज इसमें कसरत का भी एहतमाल है कि इतनी ज्यादा तलाकें हैं तुझे के पूरे घर को भर दें, तवज्जो है। तो लिहाजा अगर कोई नियत नहीं की तो फिर तो एक तो जरूर हो जाएगी, और अगर उसने कसरत की नियत की है तो फिर तीन हो जाएंगी। तो कहते हैं फली अन नशे अकद यमला उल बैत लि अजमतिन फी नफसी ही, इसलिए क्योंकि कोई चीज कभी कभार पूरे घर को भर देती है अपनी जात में बड़ा होने के एतबार से। वकद यमला उली कसरती ही, और कभी कभार कोई चीज पूरे घर को भर देती है लि कसरती ही अपनी कसरत की वजह से। फ़ाय्यज़ालिका नवात, उसने इनमें से जिसकी भी नीयत की है सहत नीयतुहु, तो खावंद की नीयत सही है। वाइंदन इदाम नीयति सबतल अकल्लु, और नीयत के मादूम होते वक्त अकल जो है वो साबित हो जाएगा, कम से कम वो तो एक तलाक बाइन है वो जरूर साबित हो जाएगी। सुम्मल असलु इंदा अबी हनीफा रहमतुल्लाह, अब ज़ाब्ता जिक्र कर रहे हैं तशबीह वगैरह का, याद रखो इमाम साहब के नजदीक जब भी तलाक को किसी चीज से तशबीह दी जाए तो इस सूरत में तलाक बाइन वाके होगी, चाहे बड़ी चीज से तशबीह दें चाहे छोटी चीज से। खावन बीवी से कहता है तुझे पहाड़ जैसी तलाक है, देखो पहाड़ बड़ी चीज है तब भी तलाक बाइन। खावन बीवी से कहता है तुझे सुई जैसी तलाक है, तशबीह दी है, तो इस इमाम साहब के नजदीक जब भी किसी चीज से तलाक को तशबीह दी जाए यह वसफ में ज्यादती का तकाजा करती है कि तलाक के वसफ में ज्यादती हो गई जी। और ज्यादती कैसे हो सकती है कि रजई दर है तलाक, बल्कि कौन सी हो जाए बाइन हो जाए। तवज्जो है, जैसे मसलन मैं कहता हूं जैदुन कल असदी, जैद किसकी तरह है असद यानी शेर की तरह है, देखो जैद के वसफ बढ़ गया, पता चल गया मालूम हो वो शेर की तरह बहादुर है, तो बहादुरी के वसफ का पता चला। तो जब भी तशबीह दी जाती है तो वो किस चीज का तकाजा करती है, वसफ में ज्यादती का, वसफ क्या हुआ बढ़ गया एक चीज का, और तलाक के अंदर वसफ का बढ़ना इसी तरह हो सकता है कि वो रजई के बजाय क्या बन जाए बाइन बन जाए, और तरह वसफ नहीं बढ़ सकता। सुम्मल असलो इंद अबी हनीफा रहमतुल्लाह, फिर जाबता यह है इमाम साहब के नजदीक कि अन्नहु मता शब्बह तलाक अबी शैइन यकउ बाइनन, कि जब भी खावन तलाक को तशबीह दे किसी चीज के साथ यकउ बाइनन तो तलाक बाइन वाक होगी। अय्यशय इनकान अल मुशब्बहु बिही, मुशब्बहु जो भी चीज हो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, ज़कर अल इज़्मा औ लम यज़कुर, चाहे खावन बड़े होने को जिक्र करे या जिक्र न करे। खावन ने कहा तुझे पहाड़ जैसी तलाक है, और एक सूरत यूं है खावन बड़े होने को भी जिक्र करता है तुझे पहाड़ जैसी बड़ी तलाक है, तो चाहे बड़े होने को जिक्र करे या ना करे। बस इमाम साहब का ज़ाब्ता यह है जब भी तलाक को किसी चीज से तशबीह दी जाएगी तो तलाके बाइन वाके होगी। जबकि आगे बताएंगे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर बड़े होने को जिक्र किया तो फिर तलाके बाइन होगी, बड़े होने को जिक्र नहीं किया तो तलाके बाइन भी नहीं। मसलन खावन ने बीवी से कहा अंत तालिकुन कल जबली, तुझे पहाड़ जैसी तलाक है, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते नहीं, एक ही तलाक होगी और रजई होगी बाइन नहीं होगी, क्योंकि अजमत को साथ जिक्र नहीं किया, बड़ा होने को जिक्र। हां अगर खावन यूं कहता है अंत तालिकुन अंतितालिकुन का इज़म इल जबली, तुझे पहाड़ जैसी बड़ी तलाक है। फिर इज़म का लफ्ज़ उसने जिक्र किया है, अब बाइन हो जाएगी। अब ये इसी तरह खावन जो है वो बीवी से कहता है अंतितालिकुन मिसलल इब्राती, मिसलल इब्राती, इब्रत उन सुई को कहते हैं, तुझे तलाक है सुई के मिसल। इमाम साहब फरमाते हैं तलाक बाइन होगी, तलाक बाइन। और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं यहां अजमत वगैरह कोई जिक्र नहीं, लिहाजा तलाक रजई होगी। हां अगर अजमत को जिक्र कर देता, यूं कहता तुझे तलाक है मिसला इजमिल इब्राती, सुई के अजमत के बराबर तुझे तलाक है, सुई जितनी बड़ी तुझे तलाक है, तो भी इमाम साहब के नजदीक मामला उसी तरह तलाक बाइन होगी। और इमाम यूसुफ फरमाते हैं यहां बड़ा होने को जिक्र कर दिया है, लिहाजा इसमें भी तलाक बाइन होगी। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं तशबी के अंदर, तलाक बाइन कब होगी? जब अजमत को साथ जिक्र करे, अगर अजमत को जिक्र नहीं करेगा तो तलाक बाइन नहीं होगी। तो कहते हैं इमाम साहब फरमाते हैं कि ज़कर अल इज़म औ लम यज़कुर, खावन ने अजमत को जिक्र किया या न किया इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमा मर्रा अन्न तशबीह यक्तज़ी ज़ियादत वस्फिन, लिमा मर्रा उस वजह से जो बात गुजर गई कि अन्न तशबीह यक्तज़ी ज़ियादत वस्फिन, के तशबीह जो है वो ज्यादत वसफ का तकाजा करती है और वसफ की ज्यादती बैनूनत के जरिए ही होगी। वाइंदा अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक इंदा करल इज़म यकूनु बाइनन व इल्ला फला, के अगर खावन ने अजमत को बड़ा होने को जिक्र किया तो तलाक बाइन होगी, व इल्ला फला वरना नहीं होगी। अय्यशय इनकानल मुशब्बहु बिही, मुशब्बा बिही जो कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। लिअन्न तशबीह कद यकूनु फी तवहुदी अला तजरीद, इसलिए क्योंकि तशबीह कभी कभार फी तवहुदी एक होने में भी होती है, अला तजरीद, तजरीद का माना जर्रदय जर्रदु, तजरीद का माना है खाली करना, खाली करना। तो बाज औकात वो फरमाते हैं अजमत से खाली करके सिर्फ वाहिद होने में तशबीह मकसूद होती है। मसलन खावन बीवी से कहता है अंतितालिकुन कल जबली, तुझे पहाड़ जैसी तलाक है, तो पहाड़ में एक अजमत है और एक है इसका वाहिद होना, तो कभी कभार सिर्फ वाहिद होने में तशबीह मकसूद होती है अजमत के बगैर ही, अजमत के बगैर ही। लिहाजा इसलिए यहां शक आ गया और शक की वजह से तलाक बाइन वाके नहीं होगी, क्योंकि कभी कभार तशबीह में क्या मकसूद होता है, सिर्फ वहदत मकसूद होती है, अजमत मकसूद नहीं होती। यह माना है लिअन्न तशबीह कद यकूनु फी तवहुदी अला तजरीद, इसलिए क्योंकि तशबीह कभी कभार वाहिद होने में होती है, अला तजरीद खाली करने के तरीके पर, यानी अजमत से खाली करते हुए। अम्मा जिक्रुल इज़्ज़मी फली ज़ियादती ला महालता, और बाकी अजमत को जिक्र करना तो यह ज्यादती के लिए होता है, ला महालता कतई तौर पर, लिहाजा उस सूरत में वसफ में ज्यादती आएगी और तलाक बाइन हो जाएगी। ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का ज़ाब्ता था। वाइंद ज़ुफ़रा रहमहुल्लाह, और इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह के नजदीक इन कानल मुशब्बहु बिही मिम्मा यूसफ बिल इज़्ज़म इंदन नास यक़ऊ बाइनन व इल्ला फहुव रजईयुन, इमाम जुफर फरमाते हैं मुशब्बा बिही को देखेंगे, अगर मुशब्बा बिही जो है वो लोगों के दरमियान अजमत के साथ मौसूफ है, लोग उसको बड़ा समझते हैं, तो फिर तलाक बाइन होगी। और अगर मुशब्बा बिही ऐसा है कि लोग उसको बड़ा नहीं समझते तो फिर तलाक रजई होगी। लिहाजा अगर खावन ने कहा अंतितालिकुन कल जबली, तो जबल को तो लोग बड़ा समझते हैं, लिहाजा तलाक बाइन होगी। और अगर कहा अंतितालिकुन कल इब्राती, कि तुझे तलाक है सुई जैसी, सुई को तो लोग बड़ा नहीं समझते, लिहाजा तलाक रजई ही होगी। तो इमाम जुफर का क्या ज़ाब्ता कि मुशब्बा बिही को देखेंगे, अगर लोग उसको बड़ा समझते हैं तो तलाक बाइन होगी, अगर लोग बड़ा नहीं समझते तो तलाक बाइन नहीं होगी। तो कहते हैं वाइंद ज़ुफर रहमतुल्लाह, और इमाम ज़ुफर रहमतुल्लाह के नजदीक इन कालन मुशब्बहु बिही मिम्मा यूसुफु बिल इज़्ज़ति इंदन्नासी, कि अगर मुशब्बा बिही उन चीजों में से है कि जो अजमत के साथ मौसूफ होता है लोगों के नजदीक, यानी लोग उसको बड़ा समझते हैं, यकउ बाइनन, तो इस सूरत में तलाक बाइन वाके होगी, व इल्ला फहुव रजईयुन, और अगर ऐसा ना हो तो फिर तलाक रजई है। भई ये व इल्ला आया, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, इल्ला से पहले वाव आ जाए तो ये दरअसल इल्ला हर्फ इस्तिस्ना नहीं है, ये इन और ला से मुरक्कब है। अई व इल्लम यकुन का जालिक, अगर ऐसा न हो, व इल्ला फहुआ रजईयुन, और अगर ऐसा न हो तो फिर तलाक रजई है। वकील मोहम्मद रहमहुल्लाह मा अबी हनीफत रहमहुल्लाह, वकील मा अबी यूसुफ रहमहुल्लाह। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के बारे में रिवायात वाजह नहीं, बास फरमाते हैं कि वो इस मसले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के साथ हैं कि जिस चीज से भी तशबीह दे दो तलाक बाइन होगी, और बास कहते हैं वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के साथ हैं कि अजमत को जिक्र करेंगे तो फिर तलाक बाइन होगी वरना तलाक बाइन नहीं होगी। तो कहते हैं वकील मोहम्मद रहमहुल्लाह मा अबी हनीफत रहमहुल्लाह, और कहा गया है कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह इमाम साहब के साथ हैं इस मसले में। वकील मा अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, और कहा गया है कि वो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के साथ हैं। व बयानहु फी कौलिही, और इस इख्तिलाफ का बयान जो है खावंद के इस किस्म के कौल में होगा, मिसला रअसिल इबरती, मिसला इज़मी रअसिल इबरती, व मिसलल जबली, व मिसला इज़मिल जबली। देखो इन लफ्जों से उनके इख्तिलाफ का अंदाजा होगा। मसलन अगर खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन मिसला रसिल इबरती कि तुझे सुई के सर के मिसल तलाक है, सुई के सर के बराबर तुझे तलाक है, तो इमाम साहब के नजदीक तशबीह पाई गई, और जो भी तशबीह पाई जाए उसकी वजह से तलाक बाइन होती है, तो इमाम साहब के नजदीक इस सूरत में तलाक बाइन होगी। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं यहां कोई अजमत का जिक्र नहीं है, बड़ा होने का जिक्र नहीं, लिहाजा इस सूरत में तलाक रजई होगी। और इमाम जुफर क्या फरमाते हैं कि मुशब्बा बिही को देखेंगे, मुशब्बा बिही क्या है, अगर लोगों में उसको बड़ा समझा जाता है तो फिर तलाक बाइन होगी वरना रजई, और सुई को तो लोगों में बड़ा नहीं समझा जाता, तो वो फरमाते हैं सूरत में तलाक रजई होगी। तो अंति तालिकुन मिसला रसिल इब्राती, इमाम साहब के नजदीक तलाक बाइन, और इमाम जुफर और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नजदीक तलाक रजई होगी। दूसरा लफ्ज है मिसला इज़मी रसिल इब्राती, खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन मिसला इज़मी रसिल इब्राती, तुझे सुई के सर के बड़े होने के बराबर तलाक है, तो इमाम साहब के नजदीक तशबीह आ गई, और तशबीह जब भी आ जाए तो तलाक बाइन होती है, तो इमाम साहब के नजदीक इसमें भी तलाक बाइन। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक भी तलाक बाइन, क्योंकि इज़म यानी अजमत का जिक्र आ गया। और इमाम जुफर जो है वो फरमाते हैं कि इस सूरत के अंदर मुशब्बा बिही यानी सुई का सुई जो है उसको तो लोग बड़ा नहीं समझते, लिहाजा इस सूरत में तलाक रजई होगी। और अगर खावन ने कहा अंति तालिकुन मिसलल जबली, तो इमाम साहब के नजदीक तशबीह आ गई, लिहाजा तलाक बाइन। इमाम जुफर के नजदीक भी पहाड़ को लोग बड़ा समझते हैं, तलाक बाइन, लेकिन इमाम वो यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक अजमत का जिक्र नहीं है, लिहाजा तलाक रजई। और अगर खावन ने कहा अंति तालिकुन मिसला इज़मिल जबली, मिसला इज़मिल जबली, तो इस सूरत में सबके नजदीक तलाक बाइन होगी। इमाम साहब के नजदीक तो इसलिए क्योंकि तशबीह आ गई, और तशबीह से तलाक बाइन होती है। इमाम जुफर रहमतुल्लाह के नजदीक इसलिए क्योंकि पहाड़ को लोग बड़ा समझते हैं, मुशब्बा बिही अजीम है। और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक चूंकि यहां इज़म का जिक्र है, अजमत का जिक्र है, बड़ा होने का जिक्र है, तो तीनों के नजदीक की सूरत में तलाक बाइन होगी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह बयान हू फी कौली ही, और इस इख्तिलाफ का बयान खावंद के इसके कौल के अंदर होगा, मिसला रसिल इबरती, मिसला इज़मी रसिल इबरती, व मिसलल जबली, व मिसला इज़मिल जबली। सूरत समझ में आ गई। वलौ काला अंति तालिकुन ततलीकतन शदीदतन औ अरीज़तन औ तवीलतन फहिया वाहिदतुन बाइनतुन। सूरत मसला ये, खावन ने अपनी बीवी से कहा अंति तालिकुन ततलीकतन शदीदतन, तुझे सख्त किस्म की तलाक है, یا انت طالق تطلیقتن عریضتن، تجھے خوب چوڑی طلاق ہے، او انت طالق تطلیقتن طویلتن، تجھے لمبی طلاق ہے، تو ان سب صورتوں میں وصف کی زیادتی آ رہی ہے، لہذا طلاق بائن ہوگی. کیا ہوگی؟ طلاق بائن. تو کہتے ہیں ولو قال انت طالق تطلیقتن شدیدتن او عریضتن او طویلتن، یہ الفاظ خاوند نے اگر کہے، فہی واحد تن بائنہ تن، تو اس صورت میں ایک طلاق بائن ہوگی. لأنما لا يمكن تدارکه يشتد عليه. اب ایک ایک کی وجہ ذکر کر رہے ہیں. خاوند نے کہا انت طالق تطلیقتن شدیدتن، تجھے سخت طلاق ہے، اور خاوند کے لیے سخت طلاق کون سی ہے؟ رجعی یا بائن؟ بائن ہے. رجعی میں تو وہ رجوع کر لے گا، لیکن بائن اس پر بھی سخت ہے، وہ رجوع نہیں کر سکتا، تو اس لیے اسے طلاق بائن مراد ہوگی. تو کہتے ہیں لِأَنَّمَا لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ، اس لیے کیونکہ وہ طلاق جس کی تلافی ممکن نہ ہو وہ خاوند پر سخت ہوگی. وَهُوَ الْبَائِنُ، اور وہ طلاق بائن ہے. وَمَا يَصْعُبُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ لِهَذَا الْأَمْرِ طُولٌ وَعَرَضٌ. اسی طرح لمبائی یا چوڑائی کو ذکر کیا، تو عربی زبان میں وہ چیز جس کی تلافی نہ ہو سکے، جس کی تلافی مشکل ہو، تو اس کام کے بارے میں عرب کہتے ہیں لہذا الامر طول وعرض، اس معاملے کی بڑی لمبائی اور چوڑائی ہے. ایسا کام جس میں جو مشکل ہے، جس کی تلافی نہ ہو سکے، تو عرب کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے. معلوم ہوا طول اور عرض کے ذریعے بھی مشکل چیز کو بیان کیا جاتا ہے. تو لہذا خاوند کے لیے سختی اور مشکل کس طلاق میں ہے؟ بائن میں ہے، کیونکہ وہ پھر رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے اسے طلاق بائن ہوگی جب خاوند لمبائی یا چوڑائی ذکر کر دے. تو کہتے ہیں وما يصعب تداركه، اور وہ چیز جس کی تلافی مشکل ہو، یقال تو عربی میں کہتے ہیں لہذا الامر طول وعرض، کہ اس کام کی لمبائی اور چوڑائی ہے، یعنی یہ بڑا سخت کام ہے. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہ یقع بها رجعیت، وہ فرماتے ہیں کہ ان سب سے رجعی طلاق واقع ہوگی، سخت طلاق کہے یا لمبی طلاق کہے یا چوڑی طلاق کہے. کہ انہ یقع بها رجعیت، ان کے ان کے ذریعے رجعی طلاق واقع ہوگی. لان هذا الوصف لا يليق به، کیونکہ یہ وصف جو ہیں طلاق کے لائق نہیں. فیلغو، تو یہ لغو ہو جائیں گے، یہ اوصاف طلاق کے لائق نہیں ہے، اس لیے کیونکہ طلاق جو ہے اس کی کوئی لمبائی چوڑائی یا اس میں کوئی سختی نہیں ہوتی. بھائی تو کہتے ہیں لأن هذا الوصف لا يليق به، اس لیے کیونکہ یہ وصف جو ہیں یہ طلاق کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ یہ اوصاف جو ہیں یہ تو جسم، جس چیز کا کوئی جسم ہو اس کے اوصاف ہیں، جس چیز کا جسم ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، یا بہت لمبا ہے، یا بہت چوڑا ہے. اور طلاق، طلاق کا تو کوئی اپنا الگ جسم نہیں، وہ تو ایک صفت ہے، طلاق کا تو اپنا الگ کوئی جسم نہیں، لہذا یہ اوصاف طلاق کے ہو ہی نہیں سکتے، لہذا یہ لغو ہو جائیں گے، ان کا کوئی اعتبار نہیں، اور طلاق رجعی واقع ہوگی. یہ معنی ہے لأن هذا الوصف لا يليق به، اس لیے کیونکہ یہ جو وصف ہے یہ طلاق کے لائق نہیں ہے. فیلغو، تو یہ لغو ہو جائے گا. ولو نوس ثلاث فی هذه الفصول صحت نیته، اور اگر خاوند نے تین کی نیت کی، فی هذه الفصول، ان فصلوں میں صحت نیته، تو اس کی نیت صحیح ہے. مثلا یہ جو ہم نے کہا، ادھر دیکھیے، وہ جا شروع میں آیا تھا انت طالق بائن، یا انت طالق البتہ تھا، یا انت طالق افحش الطلاق، یا انت طالق اخبث الطلاق، یا اسوا الطلاق وغیرہ، یہ سارے الفاظ جتنے یہاں تک گزرے ان سب کے اندر اگر خاوند تین کی نیت بھی کرے گا تو تین طلاقیں بھی ہو جائیں گی. بھئی تین کیسے واقع ہوں گی؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے بتلا دیا ان سب کے ذریعے کون سی طلاق ہوگی، طلاق بائن، یعنی اسے بینونت آئے گی، جدائی آئے گی. اور بینونت دو قسم پر ہے، ایک بینونت خفیفہ ہے، ایک بینونت غلیظہ ہے. एक हल्की जुदाई है कि जिसमें खावन दोबारा उसे निकाह कर सकता है, और एक बैनूनत गलीजा है, सख्त किस्म की जुदाई, और वो तीन तलाकों में आती है जहां दोबारा खावन उस औरत से निकाह नहीं कर सकता। तो इन सब जितने लफ्ज जिक्र हुए इनसे कौन सी तलाक आएगी? तलाक बाइन। और बाइन के अंदर वो फिर बैनूनत जो है वो खफीफा भी हो सकती है और गलीजा भी हो सकती है, उसमें दो किस्में हैं। तो लिहाजा इस वो बैनूनत गलीजा की भी नियत कर सकता है, यानी तीन तलाकों की भी नियत कर सकता है। तो कहते हैं वलौ नबसला सफीहाद हिल फसूल, और अगर खावन ने तीन तलाकों की नियत की इन फसलों में, यानी जो ऊपर जो सूरतें जिक्र हुई, सहत नियत हो तो खावन की नियत सही है, लितनव्वुल बैनूनती, बवजह बैनूनत के मुतनव्वे होने के, बैनूनत की किस्में होने के, बैनूनत की किस्में हैं, अलामा मर्रा, उस वजह से जो गुजर गई, यानी वो गलीजा भी है और खफीफा भी है, वल वाकिउ बिहा बाइनुन, और इन अल्फाज की जी जो तलाक होती है वो तो बाइन होती है, और बैनूनत दो किस्म पर है, बैनूनत खफीफा और बैनूनत गलीजा, तो जिसकी वो नियत करेगा वो वाकई हो जाएगी। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।